Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama
Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
रघुपति राघव राज पति पावन सीता
रघुपति राघव पावन सीता
रघुपति राघव राज पति पावन सीता
सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम
सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम
सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम
सीता राम सीता राम सीता राम जय
रघुपति राघव राजा पावन सीता
रघुपति राघव राजा पति पावन सीता
रघुपति राघव राजा पति पावन सीता
रघुपति राघव
नमो विष्णुपादाय Krishna Kleshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschat Deshatarine E Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Sri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataro Bhasyam Kripa Sindhubhyai Vacham Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Aradhyo Bhagavan Brajeshatanaya Tadama Vrindavanam Ramya Kachidupashana Brajavadum Vargena Vakalpitam Srimad Bhagavatam Pramana Mamalam Prema Pumartho Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatradaro Naparam Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatradaro Naparam Vansi Vibhusitakaram Navaniradavam Pitambaradarunavim Bapaladaroshtam Puranendu Sundar Mukhan Aravindanetray Krishnat Paramakimapi Tattvam Najani Yuntah Pravish Mamava Chami Mam Prasuptam सञ्जीवयत्तखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्याशस्त्रश्रवणाम् श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिमेषयन्तम् वटास्य पत्र सपुटेशयानम् बालं मुकुन्दम् मनसास्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेवम् गोविन्द दामोदर माधवेति पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो हरे कृष्णा। इस भागवत सत्र के भागवत सप्ताह के तृतीय दिवस में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेष रूप से इसके पांच साथी लोग जो कि आज यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में, तो मैं उनसे आशीर्वाद उनसे कृपा याचना करते हुए आज इस सत्र का शुरुआत करना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक किसी वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद हमारे जीवन में नहीं रहता है, आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक हम भगवान के विषय में कभी भी कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो आशीर्वाद की कामना करता हूँ इस ग्रेस पास साथी को जो कि आज यहाँ पे उपस्थित है। हालांकि ऐसे सीनियर भक्त जो है ना, वो कृपा करने के लिए उपस्थित होते हैं। उनकी उपस्थिति जो कि वातावरण को बहुत ही मंगलमय बना देती है। तो हमने देखा कि पिछले दो दिन से श्रवण करते आ रहे हैं कि बहुत सुंदर तिथि का प्रारंभ हुआ है, पितृपक्ष तिथि का श्राद्ध पक्ष भाद्र मास के इस कृष्ण पक्ष में, और साथ साथ में गौ माता के चरण चिन्हों में बैठकर हम भगवान के विषय में कुछ उनके ही गुणानुवाद कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर यह स्थान है, पवित्र स्थान है, क्योंकि जहाँ पे गौ माता वास करती है वहाँ पे सारे तीर्थ वहाँ पे निवास करते हैं, सारे नदियाँ तीर्थ वहीं पे वास करते हैं। तो बहुत सुंदर यह स्थान गौशाला, और गौ जैसे कि हम रोज की भांति आज भी हम शुरुआत गौ माता के ही गुणानुवाद करते हुए प्रारंभ करेंगे इस सत्र का। हम पिछले दो दिन में सुने कि किस प्रकार से गौ माता जो है कि भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत ही प्रिय है गौ माता भगवान कृष्ण को। अगर हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, तो गौ माता के शरणागत होकर उनकी कृपा याचना करते हुए भी हम इस भक्ति, इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो गौ माता का इंपॉर्टेंस एक भक्त के विशेष करके सारे लोग के, संसार के सारे जीवों के जीवन में गौ माता तो विशेष स्थान रखती ही है, लेकिन हम कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए भक्तों के जीवन में भी गौ माता बहुत प्रमुख स्थान रखती है, क्योंकि हम जीवन के एक लक्ष्य को प्राप्त करने के पथ में चल चुके हैं। वो लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। और ये जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ना, बिना गौ माता की कृपा से नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी की इच्छा था, प्रभुपाद जी जाते समय यह बोल कर गए कि अभी हमने 50% कार्य को किया है और 50% कार्य अभी बाकी है, जो मैं आप लोग को सौंप कर जा रहा हूं, वह है वर्णाश्रम की स्थापना करना, जिसमें कृषि को रक्षा वाणिज्य। श्री प्रभुपाद एक लेटर में यशोमति नंदन प्रभु को लेटर लिखते हैं, जो कि अभी इस्कॉन के जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रेजेंट में इस्कॉन अहमदाबाद मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। उनको लेटर लिखते हैं प्रभुपाद जी, वहां पे उस लेटर में लिखते हैं कि यशोमति नंदन प्रभु, अगर इस्कॉन को अगर सेल्फ स्वयं से चलाना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, तो आपको गौशाला का निर्माण करना चाहिए, एक अलग ट्रस्ट की स्थापना करना चाहिए, वहां पे गौशाला, गौ माता का पालन करना चाहिए। और उस लेटर में यह भी लिखते हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए हरेक भक्त को, अगर वो चाहते हैं कि कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, तो हर एक भक्त को चाहिए कि गौ पालन करना चाहिए, कृषि को अच्छा वाणिज्य। तो प्रश्न उठता है कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम तो ब्लैक में रहते हैं। तो आज स्क्वाड में इसके ऊपर बहुत विशेष जोर दिया जा रहा है, गौ पालन पे, गौ रक्षा पे, अलग अलग जगहों पे गौशाला का निर्माण हो रहा है। फर्स्ट मंदिर का निर्माण होते ही साथ साथ में गौशाला का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। तैसे आप उस गौशाला में, आप कोई भी गौशाला, आपने अपनी गौशाला अगर घर में नहीं रख सकते हैं, तो इस गौशाला में अपना गाय रखना चाहिए और उसका पूरा सालों साल खर्चा उठाकर उस गौशाला में दे देना चाहिए पालन के लिए, एक गाय को पालन करने के लिए। तो प्रभुपाद जी की इच्छा था। तो गौ माता जिसकी कृपा से हमको ये जो हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना, वो गौ माता की कृपा के बिना असंभव है। कहते हैं कि जब भक्ति में प्रगति होने लगती है धीरे 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 धीरे, तो वो व्यक्ति गाय माता के ऊपर डिपेंड होने लगता है और गाय माता से बहुत प्रेम करने लगता है और गाय के विषय में बहुत बोलता है। भगवान के धाम जो गोलोक वृंदावन धाम है, उस धाम का नाम भी गाय माता के ही नाम पे पड़ा, गोलोक धाम। ऐसे गोलोक धाम का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, चिंता मणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्षा लक्षामृतेषु सुरभिर् अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतशं ब्रह्मसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहम् भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं उस धाम का, उस गोलोक धाम का वर्णन करते हुए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष। वहां पे चिंतामणि पारसमणि है और कल्प वृक्ष ऐसे वृक्ष जिसके पास जाने से जो हम कल्पना करते हैं, जो हम सोचते हैं उसकी प्राप्ति हो जाता है, वो मिल जाता है हमको। ऐसा धाम गोलोक धाम, ऐसे धाम में जहां पे भगवान लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से विमान, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियों के द्वारा सेवित है भगवान, कमी नहीं है भगवान को सेवा करने के, हजारों हजारों लक्ष्मियां लाइन में लगी रहती सेवा करने के लिए। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से विमान सेवा करने लगी रहती हजारों हजारों लक्ष्मियां। तो एक प्रश्न उठता है, चिंतामणि धाम है, कल्प वृक्ष है, वहां पे हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? प्रश्न होता है कि भगवान क्या करते हैं वहां पे, भगवान की दिनचर्या क्या है दिन भर का क्या है? तो ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि भगवान वहां पे क्या करते हैं, लक्षा वृतेश सुलभिर अभिपालयन्तम। लक्षा मतलब लाखों लाखों, सुरभिर सुरभि गायों का सेवा करते हैं भगवान। लक्षा वृतेश सुरभिर अभिपालयन्तम, पालन पोषण करते हैं भगवान स्वयं गाय माता की सेवा पूजा वहां पे करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। ये बात ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं। तो हम भगवान भगवान के धाम क्यों जाना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? ताकि हम भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करें, उनको मदद करें। और भगवान वहां पे क्या कर रहे हैं, गाय माता की सेवा कर रहे हैं, हाँ? तो यहां पे जब हम गाय माता की सेवा करेंगे, गाय माता की सेवा पूजा का प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके उस धाम की प्राप्ति होगा। क्योंकि वहां पे भगवान को मदद करना है ना, वहां पे भगवान एक ही काम करते हैं, लक्षा प्रदेश सुरभि अभिपालयन्तम, पालन पोषण करते हैं, केवल गायों का पालन पोषण करते हैं। तो ऐसे गोलोक धाम में हमको अगर जाना है, या भक्तों का जो लक्ष्य है ऐसे गोलोक धाम की प्राप्ति करना, तो निश्चित रूप से यहां पे रहकर गौ माता की सेवा करने का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, अन्यथा गारंटी नहीं है कि हम जाएंगे। क्योंकि भगवान बोलेंगे कि गाय की सेवा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, भक्ति करो, उधर जाओ, उधर ही प्रचार प्रसार करो, यहां पे आना है तो गाय की सेवा करना पड़ेगा। और गाय की सेवा करना, तो यहां पर रहकर गाय माता की प्रैक्टिस, गाय माता की सेवा बहुत जरूरी है। मैं यही बात को बताना चाह रहा हूं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, अगर उसको हमको प्राप्त करना है, तो गाय माता की कृपा बहुत जरूरत है हमारे जीवन में, विशेषतः भक्तों के जीवन में तो और भी जरूरत है। जिस प्रकार से, जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में कोई जाते हैं, भक्त लोग बैठे हुए शायद नहीं जाते होंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में कोई जाते हैं तो रेस्टोरेंट का एक ऐसा स्थान होता है जहां पे वो आम व्यक्ति नहीं जा सकता है। वो कौन सा स्थान है, किचन। किचन में किसी को प्रवेश नहीं है, आपको खाना है तो होटल के टेबल पर बैठा के खिलाएंगे, लेकिन किचन में एंट्री नहीं देते हैं, क्योंकि एंट्री देते तो पोल खुल जाएगा, कैसे बनाते हैं नहीं एंट्री देते वहां पे, है ना। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का एक ऐसा जगह है जहां पे एंट्री नहीं देते हैं, वो कौन सा जगह है, ऑपरेशन थिएटर। वहां पे कितना भी प्रिय है, कितना भी आपका स्वजन है, लेकिन वहां अंदर गया तो वहां पे आपको भी एंट्री नहीं है। वहां पे केवल किसको एंट्री है, केवल डॉक्टर्स को एंट्री है। इस रेस्टोरेंट के किचन में कुक को एंट्री है, बाकी लोग को नहीं है। उसी प्रकार इस हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में किसको एंट्री है, डॉक्टर को एंट्री है। ठीक उसी प्रकार मंदिर, मंदिर के अंदर, मंदिर का जो गर्भगृह है जहां पे भगवान की सेवा पूजा होता है, वहां पे केवल पुजारी को एंट्री है, आम पब्लिक को नहीं है, उनको दूर से दर्शन करना रहता है कि नहीं। उसी प्रकार गोलोक धाम में उसी व्यक्ति का एंट्री है जो कि गाय माता की सेवा करता है। गाय माता की सेवा नहीं करेंगे, गाय माता की सेवा का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पे हमको एंट्री नहीं प्राप्त होगा। तो गाय माता की महिमा अपार है। जो इस्कॉन के जो ड्यूटी है, यहाँ पे जो सब लोग बैठे हुए हैं, जो कि गौड़िया संप्रदाय रूप गोस्वामी के अधीनता में, जो कि हम रूपानुग कहलाते हैं, जो कि हमारे मुख्य आचार्य रूप गोस्वामी पाद, जिन्होंने एक ग्रंथ को लिखा इस्कॉन का जो लॉग बुक भक्ति रसामृत सिंधु, इसको इस्कॉन का लॉग बुक माना जाता है। क्योंकि प्योर भक्ति को प्राप्त करना है, शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो ये लॉ बुक को अपनाना पड़ेगा अपने जीवन में, जो कि रूप गोस्वामी पाद ने लिखा। तो रूप गोस्वामी पाद महान भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते हैं, 64 अंगों का वर्णन करते हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन उसमें मुख्य 10 अंग का वर्णन करते हैं। 64 तो है ही, लेकिन मुख्य 10 अंगों का वर्णन करते हैं। जब तक इन अंगों का कोई फॉलो नहीं करता है, पालन नहीं करता है, तब तक उसकी कृष्ण भक्ति प्रगति नहीं हो पाएगा, प्रगति नहीं कर सकता है वो। इसको फॉलो करना पड़ेगा, रूप गोस्वामी पाद ने दिया है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो मुख्य 10 अंग है, उस मुख्य 10 अंगों में सबसे पहला अंग जो है वह है गाय माता की सेवा, गौ माता की सेवा और ब्राह्मणों की सेवा मुख्य अंगों में माना गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है हम भक्तों के जीवन में, सबके जीवन में तो है, संसार के सभी प्राणियों के जीवन में है, लेकिन हम भक्तों के जीवन में जो कि एक प्रयास कर रहे हैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए, अगर प्राप्त करना है तो गौ माता की कृपा बहुत जरूरी है उसके जीवन में, बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से गौ माता का जो इंपॉर्टेंस है हम भक्तों के जीवन में बहुत अपार है, उसको हमको समझना चाहिए हम कृष्ण भक्तों को। तो आइए हम भागवत के इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए, हमने कल तक सुना, पिछले दो दिनों में भागवत महात्म्य, भागवत की महिमा अलग अलग रूप से किस प्रकार से वेद व्यास मुनि वर्णन करते हैं कि ये भागवत जो है किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। भक्ति ज्ञान विवेकानाम, इस भागवत कथा को सुनने से, भागवत का सेवन करने से व्यक्ति का ज्ञान भी बढ़ता है, उसके जीवन में वैराग्य भी आता है और उसकी भक्ति का भी पोषण होता है, भक्ति प्राप्त होता है। क्योंकि सुनने मात्र, सुनना ही एक भक्ति है। इस प्रकार से हमने अलग अलग रूप से हमने पिछले दो सत्र में भागवत की महिमा को सुना और साथ साथ में पितरों पितृपक्ष जो चल रहा है, इस श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष की भी महिमा को श्रवण करते आ रहे हैं। तमाम भागवत का जो महिमा सत्र कल समाप्त हुआ और हम अभी भागवत के कथा की ओर अग्रसित होंगे, लेकिन पितृपक्ष चल रहा है इसलिए हम थोड़े थोड़े पितरों के बारे में, श्रीमद् भागवत क्या कहता है, भागवत में इस पितृपक्ष के बारे में क्या वर्णन है, वो भी थोड़ा थोड़ा सुनते चलेंगे। तमने कुछ रूप से कल हमने वर्णन किया कि किस प्रकार से व्यक्ति का गति होता है और कैसा कर्म करता है उसका कैसी गति होता है ना, ये सारे वर्णन हम कर रहे थे कल। और विशेष रूप से हमने बताया कि इसमें भागवत के पंचम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कई 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं, तो मैं संक्षिप्त रूप में वहां पे ये बताया कर कि किस प्रकार से व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको किस प्रकार से उसकी गति होता है। किसी ने आज मेरे से प्रश्न ऐसा पूछा कि प्रभु जी नरक का थोड़ा और वर्णन करना चाहिए था। मैं बोला सोच रहा था कि बहुत इंटरेस्ट है नरक के विषय में जानने के लिए। खैर मैं उनको यही बताया कि अभी हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं तो हमको वो भय जो है ना कि हम कौन सा कर्म करेंगे क्या करेंगे वो सब भय चला गया। एक्चुअली अभी वो नहीं आने वाला है, अभी चिंता मत करिए, यमराज के दूत तो अभी नहीं आएंगे। भागवत श्रवण करना प्रारंभ कर दिए तो निश्चित रूप से यमराज के दूत तो नहीं आएंगे, कन्फर्म है। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं अलग अलग नरकों का, तो थोड़ा संक्षिप्त में और एक 5 मिनट के लिए मैं उन नरकों का वर्णन कर देता हूं, क्योंकि जिसने प्रश्न पूछा थोड़ा उसको संतुष्टि हो जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर व्यक्ति इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु ही नराणाम, अब इस प्रकार से पशु जैसा जीवन जीता है और गलत कार्य में लगता है तो उसकी अधोगति होती है, अधोगति होती है और नरक लोक को प्राप्त होता है। और नरक में उसको जिस प्रकार का वो कार्य किया हुआ है, जो प्रकार के गलत कार्य, उसी के अनुसार उसको सजा दी जाती है, उसी के अनुसार उसको यातना शरीर प्राप्त होता है और उसको दुख को भोगना पड़ता है, दुख दिया जाता है। एक कन्फर्म है। तो जैसे कि अगर इस संसार में कोई अगर मांस खाता है, अभी सुनने की इच्छा रखे तो मैं बता ही देता हूं, क्योंकि बहुत भयानक भयानक परिस्थिति होता है उस व्यक्ति का। अगर कोई संसार में मांस को खाता है, जानवरों को मारता है और खाता है, तो उस व्यक्ति को कुंभ विभाग जैसे नरक में डाला जाता है। हजारों नरक है लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसको संक्षिप्त में कुछ 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में इस नरकों का वर्णन विस्तृत रूप से है। तो कुंभिभाग नरक में उसको डाला जाता है और कुंभिभाग नरक में उसको क्या होता किया जाता है, वहां पे एक कढ़ाई के अंदर तेल होता है जो कि उबलता रहता है, बहुत गर्म रहता है, कढ़ाई के अंदर तेल होता है और वो तेल उबलता रहता है एकदम, और उस व्यक्ति को उस कढ़ाई में डाला जाता है। जिस प्रकार से उसने मांस को तल के खाया ना, जिस प्रकार से तला है छाना है मांस को ना, उसी प्रकार को उसको उस कढ़ाई में डाल के छाना जाता है। समस्या है कि उसको दुख बहुत आता है, वो बहुत तकलीफ होता है, तड़पता है, लेकिन भाग नहीं सकता है, उसको भोगना ही है, भोगना ही है, उसको दुख को झेलना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो मांस खाने वाले को कुंभिभाग नरक जैसे नरक में जाकर जाना पड़ता है और वहां पर उसको इस प्रकार से यातना दिया जाता है। अगर कोई पुरुष पर स्त्री संग अगर करता है या स्त्री पर पुरुष संग करता है तो उसको तप्त सुरमी जैसे नरक में डाला जाता है। अब ये तप्त सुरमी नरक ऐसा है कि जैसे वो पर पुरुष की इच्छा की थी जैसे उसका संग करने के लिए, वैसे ही एक लोहे का स्त्री को बनाया जाता है या पुरुष को बनाया जाता है, सेम वैसा ही शक्ल, लेकिन वो लोहे का होता है और कैसा, वो एकदम तपाया हुआ, तपाया हुआ लोहा होता है और उसको वहां पे खड़ा किया जाता है और इस व्यक्ति को पकड़कर जबरदस्ती उसके साथ आलिंगन कराया जाता है, जबरदस्ती आलिंगन कराया जाता है, बहुत कष्ट होता है उसको, नहीं चाहता है, अभी वहां पे चिल्ला रहा है अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन वहां पे कोई सुनवाई नहीं। इसलिए साधु संत अगर प्रचार कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो उसी समय समझ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर सुनवाई नहीं होगा, यहां पे ही लग जाना चाहिए, वहां पे सुनवाई नहीं, वहां पे तो केवल दंड ही दिया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं। एक मौका है कि जब वो वेटिंग में रहता है ना पितृलोक में, कल मैं वर्णन कर रहा था ना, नरक के बाजू में ठीक पितृलोक है,
वहां पे जब रहता है तो उसके स्वजन, उसके परिवार, उसके पुत्र इत्यादि अगर उसके लिए कुछ कार्य करे तो वहां से निकल सकता है। एक मौका है था उसके पास, जब वेटिंग लिस्ट के लिए वहां पे जब गिना जाता है ना, वहां पे मौका है, उस समय वो निकल सकता है। लेकिन उस मौके को भी अगर गवार बैठा, अगर उसके स्वजन, उसके परिवार कुछ नहीं किए, तो निश्चित रूप से उसको यातना शरीर प्राप्त होता है और उसके बाद वो दुख तो भोगना ही पड़ता है उसको, जिस प्रकार से नरक, जिस प्रकार से कार्य किया हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, गुटखा खाता है, पान तमाकू मसाला ये सब खाता है ना, तो उसको अहिपायन, अहिपानह नरक जैसे उसको बताया जाए, वहां पे उसको डाला जाता है। और वहां पे उसको पीटते हैं, बहुत मारते हैं, और उसको यमराज के दूत जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को जबरदस्ती उसके मुंह को खोलते हैं, यहाँ पे एक रस्सी लगाते हैं, ऊपर एक रस्सी लगाते हैं, दोनों को ऊपर खींच के पूरा जबरदस्ती खोल के रखते हैं। और शराब पिया है, पान तमाकू मसाला खाया हुआ है ना, उसको क्या करते हैं कि पिघला लोहा, पिघला हुआ लोहा, लोहे को आप गर्म करेंगे ना, गर्म करेंगे ना, वो मेल्ट होने लगता है, जब ये हाथ बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उसको पिघलाते हैं, साथ साथ में कांच उसको पिघले हुए, और उसको जबरदस्ती, वो तो थोड़ी ना पीना चाहेगा, इसलिए उस रस्सी से उसको पकड़ा जाता है और खींचा जाता है और जबरदस्ती उसके मुख में डाला जाता है बस। लेकिन मृत्यु नहीं होता है वहां पे, वो भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। अगर कोई जुआ खेलता है, ताश पत्ता ये जो भी जुआ खेलता है, तो उसको संदक जैसे नरक में डाला जाता है, जहां पे उसके हाथ पैर को बांध दिया जाता है, हाथ पैर को बांध कर एक पकड़ को लिया जाता है, पकड़ से उसके जो चमड़े को उसको खींचा जाता है, टोटल सात लेयर्स होते हैं, जैसे ये चमड़ी दिख रहा है ना, इसके अंदर एक दो तीन चार पांच छह सात लेयर्स होते हैं, इसलिए तो थोड़ा कट जाता है तो तुरंत सूख के वापस हो जाता है ना, सेवेंथ लेयर्स होते हैं। तो जो जुआरी है उसको क्या करते हैं, पकड़ के बांधते हैं और पकड़ से उसके चमड़ी को खींचा जाता है, एक एक सात लेयर्स को निकाला जाता है, तो कितना तकलीफ, कोई हमको चिमटी मार देता है तो कितना गुस्सा आता है, हाँ सर्प की तरह ऐसा हो जाते हैं, सोचिए कितना बहुत। इस प्रकार से अलग अलग नरकों का वर्णन, कोई ऐसा भी वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद, हरे कृष्णा। रोजी मैं चाह रहा था कि दो शब्द थोड़ा कुछ बोल के जाए, प्लीज कम दो, पांच मिनट कहीं निकलना है, पांच मिनट कुछ शब्द थोड़ा सा, आपके जलगांव के लोग हैं, मैं तो यहाँ वापस नहीं आने वाला हूँ, इसलिए प्लीज कम के कुर्सी लेकर आए, रोजी के मुखारविंद से हम थोड़ा कुछ शब्द को सुनेंगे, क्योंकि ये कृपा है संतों के मुख से, हम अगर नहीं सुनते हैं, सुनते हैं तो कृपा प्राप्त होता है, तो इसलिए रोजी आए हुए हैं इतने दूर से, तो हम उनके मुखारविंद से थोड़ा कुछ शब्द को सुनेंगे।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कथा तो अच्छी तरह से पूजा में करवा रहे हैं, लेकिन कुछ सेवाएं भी हैं, हम लोग वहाँ गौशाला में गए थे, कई सारे सेवाएं हैं, शाम को कार्यक्रम भी है, रात को एक बजे मेरा ट्रेन भी जाना भी, इसलिए जाना था, लेकिन सुनने को अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि दो दिन मैंने मिस किए, थोड़ा सा लग रहा था क्योंकि दो दिन और सुनता था रोजी के मुखार से, रोजी वापिस है गुजरात से है, जहाँ पर बड़े बड़े हमारे प्रवक्ता कुंडल कृष्ण प्रभु, राम कृष्ण प्रभु, कमल लोचन प्रभु, बड़े बड़े जो कथाकार है गुजरात के परिसर में ही है, वहाँ ही अच्छा प्रचार करते हैं, तो हमारा सौभाग्य गुरु जी के मुखारविंद से हम सुनने को मिल रहा है, जो भक्त इस्कॉन के मतलब साधना करते हैं, साधक भी अच्छे पढ़े हैं, वहाँ पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कुछ सेवाएं कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं, अगर ऐसे भक्तों के मुख से हम लोग सुनेंगे भागवत, हम भगवान की वाणी, भगवान की कथा, भगवान के बारे में महात्मा, तो बहुत मधुर लगता है, विशेष करके गुरु जी की सहेली जो है भोजन स्थल से बता रहे हैं जैसे हमारे बड़े लोग करते उसी प्रकार में, और वो अपने मन का कुछ नहीं जैसे है वैसे भागवत हमें दे रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य कैसे हमें सुनने को मिल रहा है आज की माला के, अभी ये पितृपक्ष शुरू हुआ है इसी समय में, जैसे माता जी ने यहाँ पे सुविधा की है कथा का, ये जरूरी है। कई बार हम अलग अलग चीजें करते हैं कुछ करते हैं, लेकिन भागवत श्रवण करना या कीर्तन करना या भक्तों को प्रसाद देना ये बड़ी बातें होती है। क्योंकि अभी तो हम लोग हैं, लेकिन जो लोग नहीं है हमारे रिश्तेदार कोई ना कोई व्यक्ति जिन्हें शरीर छोड़ा है अभी शरीर नहीं है, तो उनके लिए हम खास करके कर सकते हो, कहीं भी रहेंगे तो उनकी उन्नति होती है। बाकी उनकी पदोन्नति होने के बाद फिर वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाते हैं कि आपने हमें इस नरक में जहाँ कहीं भी होंगे वहां से उठा कर हमारे लिए व्यवस्था की, हमें ऊपर ले गए, तो वो आशीर्वाद देते बरसाते हैं, फिर हमारी अच्छी गति होती है, फिर हमारे लिए भी कोई ना कोई करेगा। अगर हम किसी के लिए नहीं करेंगे तो कोई हमारे लिए नहीं करेगा, ये अच्छा मौका होता है। और खास करके गुरु जी के मुकाबले से अच्छी भाषा गुरु जी बन रहा है, मधुर लग रहा है, मुझे भी एक कुछ सेवा के कारण जाना पड़ रहा है कि भागवतम सुनना जरूरी है। कई बार हम समय निकाल नहीं पाते हर दिन, मंदिर के जो भक्त है पूर्णकालीन है या जो सेवाएं प्रचार करते हैं उनके लिए तो ये संभव होता है, कहीं ना कहीं प्रचार करते भागवतम पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो गृहस्थ भक्त है माता है उनको समय मिलता नहीं है, घर में इतनी व्यस्त हो जाती है, सेवाएं होती है, अलग अलग काम होता है या नौकरी का जाना पड़ता है, तो समय निकाल नहीं पाती है। तो ऐसे अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, साल में एक दो बार दो तीन बार जहाँ जाकर ऐसे भी, तो माहौल बहुत ही अच्छा है, बाजू में गाय है दोनों तरफ, गाय के बीच में बैठे हुए हैं, इतना मधुर सुगंध भी आती है गोबर की, ऐसे नहीं मिलता है। इस अवसर पितृपक्ष का माहौल है, फिर भक्त लोग सामने है, भागवतम है, तुलसी महारानी है, गाय के बीच में बैठे हुए हैं, तो गाय भी सुन रही है, वो भी आशीर्वाद देती होगी कैसे कथाएं चल रही है मेरे गाय के बारे में भगवान के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण है, ये मौका हमें लगता है हमें सुना होगा, फिर भी वो सुनना बहुत जरूरी है, बार बार सुनेंगे तो हम लोग सुनेंगे तो सुधरेंगे, सुनेंगे नहीं तो सुधरेंगे नहीं, तो इस प्रकार सुनना चाहिए। क्योंकि हमारी भक्ति तो श्रवण भक्ति है, कानों से कितना सुनेंगे, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे या होता है, ये चित्त हमारा अगर शुद्ध करना है तो कानों से सुनना ही पड़ेगा बार बार, चाहे शायद नींद आती होगी या पंखा चल रहा है कुछ होता है, फिर भी कान में वो शब्द जाएंगे। ये साधारण शब्द नहीं है, अमर पुराण है जिसमें कोई मल नहीं है, ऐसा अमर पुराण हम सुनेंगे तो हमारे हृदय का जो मल है वो मल भी अपने आप दूर हो जाएगा। विशेष करके ऐसे भक्तों के मुकाबले से जो बता रहे हैं, खास करके हमारे लिए आए यहाँ से, ये बड़ी बात होती है, ऐसे तपस्वी भक्त सुनना बहुत आवश्यक होता है। मैं यहाँ पे विराम दूंगा, थोड़ा जाना था कुछ सेवाएं अभी बाकी है, शाम को फिर बनेंगे गीता कोर्स में आखिरी दिन है, और रात को 1 बजे मेरा ट्रेन है, कल फिर विश्व हरिनाम महोत्सव कल से शुरू हो रहा है, आज ये भागवत का पान हो रहा है, कल से हरिनाम का पान होगा सुबह शाम सुबह शाम, कहना कि विश्व हरिनाम महोत्सव 17 से 24 कल शाम को हमारे यहाँ बड़ा इनॉग्रेशन है, फंक्शन है, तो वहाँ पहुँचना जरूरी है, तो आप लोग इसमें सहभाग ले सकते हैं, कथा शायद कल भी चलेगी ना, और भी कथा है तो हरिनाम और कथा एक ही है, क्योंकि भगवान के बारे में कीर्तन और श्रवण समान ही है, कोई अलग नहीं है। तो बहुत गुरु जी का धन्यवाद हृदय से, गुरु जी के लिए प्रार्थना, गुरु जी आप हमारे लिए प्रार्थना भी कीजिए ताकि हम लोग सेवा ऐसे ही कर सके। जलगा तो बहुत जल्दी है, प्याज हो गया, माहौल भी बहुत अच्छा है, ठंडा है, ज्यादा गर्मी भी नहीं, ज्यादा ठंडी भी नहीं, बारिश भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, हरे कृष्णा।
माता की जय, बस
के लिए एक बार फिर से हरिनाम का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे संतों के मुख से जो अपने सब कुछ त्याग कर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो उनके मुख से सुनना बहुत हम जैसे गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है, बुखार विद से यही उनकी वास्तविक सेवा है। प्रभुपाद जी कहते थे कि संत के वास्तव अगर से वास्तविक अगर सेवा करना चाहते हो तो जो बोलता है ना उसको सुनो ध्यान से, यही उसका वास्तविक सेवा है, यही उसका वास्तविक सेवा है। तो हम संतों के मुख से जो भी कुछ बोल रहे हैं अगर उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भक्ति का वर्धन होता है। तो बहुत बहुत आभारी रहे हम इसके पास साथी प्रभु, साथ साथ में चैतन्य जीवन प्रभु और प्रोधी और कीर्तन वाले भी सभी लोग, बहुत सुंदर आनंद आया हम
हमने पिछले दो दिन से कर रहे हैं। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भागवत के पंचम स्कंद में नरक लोकों का वर्णन करते हुए कई सारे नरकों को गिनाते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है तो उस गलत कार्य के स्वरूप ही वहां पे उसको यातना दिया जाता है, वहां पे उसको तकलीफ दिया जाता है, ऐसा भी वर्णन करते हैं कि अगर कोई बिजनेस में धंधा करते हुए झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, आजकल तो पूरा पग पग हर 5 मिनट में कोई झूठ बोलता है, तुरंत तुरंत पहले नहीं हाँ ना तुरंत तुरंत झूठ बोलता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अगर कोई झूठ बोलता है बिजनेस में अपने धंधे व्यापार में तो उसको एक नरक का वर्णन करते हैं, उसको सार वादन नरक में भेजा जाता है। और वहां पे क्या कर किया जाता है कि वहां पे बहुत सारे कुत्ते हैं, वैरायटी ऑफ बहुत सारे कुत्ते हैं, और इतने क्रूर कुत्ते हैं कि उनका जो दांत है ना वज्र के समान है, इतने क्रूर कुत्ते हैं। और गिनती भी बताते हैं उस नरक में टोटल 720 कुत्ते हैं, और उस 720 कुत्तों के बीच में उस व्यक्ति को डाला जाता है। अभी सोचिए वो क्या हालत करेंगे। तो जो झूठ बोलता है तो उसको नरक में 720 कुत्ते इंतजार कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि झूठ ना बोले तो फिर तो बिजनेस कैसे होगा भाई, ये तो गलत बात है। लेकिन इसका भी बताया गया है कि झूठ भी बोलना है व्यापार बिजनेस में, झूठ बोलने की संतुति दी गई है, लेकिन कितना ये प्रश्न है, कितना। तो वर्णन आता है कि जितना दाल में नमक, बस यही उत्तर है। आप समझ लीजिए कितना बोलना है झूठ। दाल में नमक ज्यादा भी डाल दे तो भी समस्या, और ना डाले तो भी समस्या है ना। तुमको झूठ भी बोलना है तो उतना ही जितना दाल में नमक है, इसका एक ही आंसर है। नहीं तो फिर जो है वो तो है लागू होगा ही। इस प्रकार से अनेक नरकों का वर्णन करते हैं। जो मनुष्य भगवान के भगवान को भोग लगाए बिना खाता है, देखिए इसका भी वर्णन आया है, भगवान को भोग लगाए बिना खाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इस संसार की हर एक वस्तु जो है भगवान की है। ईशा वास्यमिदं सर्वं यत् किंचा जगत्या जगत्। इस संसार में जो कुछ भी चल अचर, जो कुछ दिख रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है हमको, ये सारे चीजें भगवान की है। इसलिए हम कुछ भी प्राप्त करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उनको अर्पण करते हुए करना चाहिए, प्रभु आपका है। इस संसार में हर एक वस्तु भगवान की है, लेकिन हम कुछ चीजों को प्राप्त किए तो हम बोलते हैं कि हमारा है, हम स्वामी मान लेते हैं अपने आप को। लेकिन हर एक वस्तु हमको समझना चाहिए कि भगवान का है। एक बार एक मंत्री अपने राजा को वर्णन करते हुए बोल रहा था, प्रभु बहुत ग्लोरीज कर रहा था राजा का, कह रहा था कि प्रभु आप तो बहुत महान हो, इतने महान हो आप कि आप ऐसा कार्य कर सकते हो जो भगवान भी नहीं कर सकते हैं, आप इतने महान हो। मंत्री राजा की प्रशंसा कर रहा है, इतने महान हो कि आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हो कि भगवान भी वो कार्य नहीं कर सकते हैं। तो राजा उस दिन तो बहुत क्रोध हो गया, बोला तुम मेरी प्रशंसा करता ठीक है, लेकिन आज तो प्रशंसा की सीमा तुमने पार कर दिया, भला इस संसार में भगवान से बढ़कर कोई हो सकता है क्या? तुमको ये प्रस्तावित करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा कि क्या ऐसा कार्य है कि जो कि मैं कर सकता हूं और भगवान नहीं कर सकते हैं। अगर तुम उसको स्थापित नहीं किया तो तुमको कल मृत्यु दंड दिया जाएगा, ऐलान कर दिया। तो मंत्री ने बोला ठीक है राजन, मैं कल आपको स्थापित करके बताऊंगा। तो दूसरे दिन मंत्री आया, सभा बैठी और मंत्री वर्णन करते करते और मंत्री कहने लगा कि प्रभु मैं आपका मंत्री हूं, मैं अगर आपके विरुद्ध गया, आपके आदेशों का पालन नहीं किया, आपके विपरीत गया तो आप अपने राज्य से हमको बाहर निकाल के फेंक दोगे, जैसे आपने बोला ना अभी हमको मृत्यु दंड दे देंगे आप। अगर मैं आपके आदेशों का पालन नहीं किया तो आप मुझे अपने राज्य से आप मुझे निकालकर फेंक देंगे, मरवा डालेंगे। आप ये कर सकते हैं लेकिन भगवान ये कार्य नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये राज्य जो है आपका है, आपके अधीनत में है। आप क्या कर, मैं अपराध करूंगा आपके प्रति तो आप राज्य से बाहर फेंक दोगे, लेकिन ये संसार तो भगवान का है। ईशा वास्य विदम सर्वं भगवान फेंकेंगे भी तो किधर फेंकेंगे, वो बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसा आपका कार्य कर सकते हैं जो भगवान भी नहीं कर सकते हैं। इससे क्या पता चला? इससे यह पता चलता है कि ये संसार में जो भी कुछ है वो सब भगवान का है, भगवान का है सब कुछ, सब कुछ भगवान का है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उससे पहले भगवान को अर्पण करके नहीं करता है, खाता है, एक तो पाप तो खा ही रहा है लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति जो बूढ़े को नहीं खिलाता है, बच्चों को नहीं खिलाता है, बूढ़े और बच्चों को प्रायोरिटी नहीं देता है, ऐसे लोग को कृमि भोजन जैसे नरक में डाला जाता है। कृमि भोजन जहां पे उसको बहुत अनेक प्रकार से यातनाएं दिया जाता है, बहुत बड़ा एक नरक है। इस नरक का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 100,000 योजन इतना बड़ा यह नरक है और उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है और उस व्यक्ति के पीछे बहुत क्रूर से क्रूर जानवर को भगा दिया जाता है और वो दौड़ता रहता है और जानवर उसका पीछा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। यहां तक कि अगर कोई मच्छर को मारता है, कॉकरोच मारता है बिना मतलब के, कुछ लोग होते हैं मारते ही रहते हैं, आजकल तो घर में बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन ले खेलते हैं घर में, अरे कॉकरोच को मारा, अरे सफाई ऐसा रखोगे कि कॉकरोच आएंगे नहीं, ऐसा स्वच्छता रखो घर के अंदर कि नहीं आएंगे वो, अब ये सब आ रहे मतलब गंदगी है, क्लीन करो, बिना मतलब की मारते रहते हैं। ऐसे लोगों को अंधकूप जैसे नरक में डाला जाता है, अंधकूप जैसे नरक, जहां पे अभी क्या किया है, बैडमिंटन खेला ना, मच्छरों को इतना मारा है ना, तो वर्णन है कि बहुत बड़े बड़े मच्छर 20-20 25-25 फुट के इतने बड़े बड़े मच्छर उसको टंक मारते हैं, इस प्रकार की यातना दिया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग नरकों का वर्णन, बहुत सारे नरकों का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद। तो ये वर्णन इसलिए आया है श्रीमद् भागवतम में कि एटलीस्ट व्यक्ति इस वर्णन को सुन के कम से कम सतर्क हो जाए, इसलिए बताया गया शास्त्रों में। भागवत जैसे स्थान पे इस प्रकार की बातें को रखा गया मतलब जीवात्माओं को सतर्क करना चाह रहे, बच जाओ, अभी भी समय है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी पाद अलग अलग नरकों का वर्णन करते हैं तो पितृ पक्ष का जो ये पावन तिथि जो चल रहा है, श्रीमद् भागवत में इस पितृ पक्ष का जो महात्म्य को बताते हुए श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में एक कथा का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में एक राजा जिनका नाम था नभग, नभग राजा जिनके चार पुत्र थे, नभग राजा जिनके चार पुत्र थे, बहुत प्रतापी राजा थे। तो उनके जो चार पुत्र थे उसमें जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था नाभाग। नभग के छोटे पुत्र का नाम नाभाग। तो पिता की उम्र, ये जो नाभाग था ये बचपन से ही गुरुकुल में चला गया, बचपन से गुरुकुल में जाकर वहां मेरे गुरु के आश्रय में रहकर पढ़ाई करने लगा। ये हमारी वैदिक पद्धति होती थी कि 25 साल तक वो बच्चा गुरु के आश्रय में रहता था, गुरु के आश्रय में रहकर पढ़ाई करता था और गुरु ही उसके पिता के जैसा देखभाल करता था और जो गुरु पत्नी है उसकी माँ के जैसा देखभाल करती थी। इसलिए हमारी सात प्रकार की माता जो है ना उसमें से एक माता है एक तो माता है अपनी माता आत्मा माता, दूसरी माता है गुरु पत्नी। गुरु की जो पत्नी होती है वो अभी हमारी माँ है। क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता ऐसी थी कि 25 साल तक वो बालक गुरु के संरक्षण में रहता था और उसके लिए उसके माँ बाप गुरु और गुरु पत्नी ही हुआ करते थे। तो इसी प्रकार से जो छोटा बालक था बचपन से जो नाभाग था वो बचपन से गुरुकुल में पढ़ाई करता था, गुरुकुल में रहता था। लेकिन इधर क्या हुआ, बाकी तीन भाई घर गृहस्थी विवाह शादी इत्यादि सब कुछ हो गया, चल रहा है पूरा गृहस्थी। कुछ समय के पश्चात राजा नभग बूढ़े हो गए, अभी राजपाट छोड़ने का समय आ गया, वानप्रस्थ लेने का समय आ गया। तो उस समय राजा नभग ने सोचा कि अपनी जो संपत्ति है इसका हम बंटवारा कर दें, हमारे चार पुत्र है इस संपत्ति का बंटवारा कर दें अपने पुत्रों में। लेकिन बंटवारा करना है तो जो गुरुकुल में जो छोटा बच्चा है जो छोटा बालक पढ़ रहा है उसको बुलाना है, क्योंकि चारों एक साथ में रहेंगे तो बंटवारा करेंगे। लेकिन बाकी के जो तीन भाई थे उन्होंने पिताजी को बोला कि पिताजी आप संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए, वो जब गुरुकुल से आएगा तब देखा जाएगा, वो जब आएगा तब देखा जाएगा, हम यहाँ पे बंटवारा कर लेते हैं, वो जब आएगा तो देखा जाएगा, हो सकता है गुरु के ही आश्रम में रह जाए, हो सकता है ब्रह्मचारी रह जाए, जीवन भर सन्यासी बन जाए, सन्यास धर्म का पालन कर ले, इसलिए जब तक है उसको छोड़ दिया जाए, जब आएगा तब देखेंगे। पिताजी की तो इच्छा नहीं थी लेकिन क्या करें, अभी बूढ़े हो गए हैं, अभी पुत्रों की बात तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो हमने सुनाया था ना और एक जेल अपने पिता को जेल में डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो राजा नभग ने संपत्ति को तीन भागों में बांट दिया, तीन भागों में संपत्ति को बांट दिया। अभी ये तीनों भाई अभी इस संपत्ति को लेकर अलग अलग अपना जीवन यापन करने लगे। एक्चुअली में इनका प्लान था कि वो तो जीवन भर, वो तो इतना साल गुरुकुल में रह गया, इन तीनों ने प्लान बनाया था पिता को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि इनको संपत्ति देनी नहीं थी उस बार, चौथे भाई को देना ही नहीं था, एक प्लान बनाया था उन्होंने, नहीं दे रहा था संपत्ति। यही है इस संसार के मनुष्य की स्थिति, जितना भी धन संपत्ति मिलता है ना उसको कम ही लगता है। किसी के पास साइकिल है तो सोचता है कि मोटरसाइकिल आ जाए, किसी के पास मोटरसाइकिल है तो सोचता है कि और बड़ी गाड़ी आ जाए, फोर व्हीलर आ जाए, किसी के पास फोर व्हीलर है तो वो सोचता है कि मर्सिडीज आ जाए, उम्र से नहीं और भी बट पता नहीं क्या क्या सोचता था, जो जो प्राप्त हो जाता उससे और बड़ा इच्छाएं खत्म नहीं होती है। इस मनुष्य की खोपड़ी ऐसा है ना, कभी भरता ही नहीं है, कभी नहीं भरता है इस संसार में। एक बार एक व्यक्ति नारद मुनि की भक्ति किया, नारद मुनि के लिए तपस्या किया। आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना होगा कि शिव जी की तपस्या किया, दुर्गा जी की तपस्या किया, गणेश की तपस्या किया, किसका किसका तपस्या किया, किसका किसका, लेकिन नारद मुनि की तपस्या किया है कौन कर देगा तपस्या? फकीर फाकड़ा उनके पास क्या है, घूमते रहते हैं नाम कीर्तन करते हैं घूमते रहते, कुछ तो है नहीं, कौन करेगा तपस्या, कुछ देर क्या देंगे, कोई नहीं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति निकला जो कि नारद की तपस्या किया, घोर तपस्या किया और नारद जी को प्रसन्न किया। नारद जी सोचे कोई तो एक निकला मेरा भक्त जो कि इतनी तीव्र रूप से मेरी भक्ति कर रहा है, मेरी तपस्या कर रहा है। नारद मुनि तो एकदम प्रसन्न होते हुए प्रकट हो गए इसके सामने, बोलो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। नारद मुनि तो इतना प्रसन्न थे सोचे कि चलो जो मांगेंगे दे देंगे, और नारद मुनि तो यही सोच रहे थे क्या मांगेगा, भक्ति मांगेगा दे देंगे उसको, क्योंकि उनके पास तो वही है भक्ति है दे देंगे उसको। लेकिन ये मनुष्य जो था ना, नारद मुनि की जो तपस्या कर, नारद मुनि प्रकट हुए और इस मनुष्य ने क्या बोला कि नारद मुनि मुझे बहुत सारा धन संपत्ति चाहिए। नारद मुनि तो सोच में पड़ गए, रॉन्ग नंबर लगा दिया, तुमने टाइम वेस्ट किया, किसकी तपस्या कर लिया तुमने, तुमको मालूम नहीं कि मेरे पास धन संपत्ति ऐसा कुछ है नहीं, इस संसार की कोई धन संपत्ति मेरे पास है नहीं, तुमने बेकार का मेहनत किया। नारद मुनि भी सोचे कि भक्त मिला भी तो पैसा मिला धन चाहिए। नारद मुनि ने बोला भाई माफ करना, अभी मैं निकलता हूं, ये चीज मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन वो व्यक्ति ने बोला कि प्रभु मैं आपकी इतना सालों तक तपस्या किया, आपको शुरुआत में ही आके बोल देना चाहिए था ना, इतना मेहनत क्यों कर रहा है। नारद मुनि तो सोचे कितना तीव्रता देखते हैं उसी हिसाब से उसको भक्ति प्रदान करेंगे, लेकिन इसने तो कुछ और आशा लगाया हुआ था। नारद मुनि बोले कि नहीं मैं क्षमा करना, मैं नहीं दे सकता है, मेरे पास है ही नहीं, जो चीज मेरे पास नहीं मैं कैसे दूंगा। तो व्यक्ति ने बोला कि कोई बात नहीं है, आप ना एक मुझे लेटर दे दीजिए और मैं जाके कुबेर जी से ले लूंगा, आप लिख के दे दीजिए लेटर कि एक व्यक्ति को भेज रहा हो उसको थोड़ा धन संपत्ति दे देना, आप लेटर लिख दीजिए ना, इतना तो कर दीजिए। तो नारद मुनि ने बोला कि ठीक है चलो ये कर देता हूं। नारद मुनि ने लेटर लिखा कुबेर जी एक व्यक्ति को भेज रहा हूं, मेरा भक्त था, एक व्यक्ति को भेज रहा हूं उसको थोड़ा धन संपत्ति दे देना, लेटर लिखा और नीचे साहिब नारद मुनि भेज दिया लेटर। और व्यक्ति ने उस लेटर को लेकर गया कुबेर जी के पास, कुबेर जी के पास गया और लेटर को दिखाया, बोला कि नारद मुनि ने भेजा है मुझे कुछ धन संपत्ति चाहिए। कुबेर जी देखेंगे नारद मुनि, कुबेर जी तो प्रसन्न हो गया कि नारद मुनि ने चलो कुछ सेवा तो दिया, बड़ा प्रसन्न हो गए। और कुबेर जी अपने अनुचरों को अपने दास दास को बुलाते हैं, सेवकों को बुलाते हैं, बोलो कि ये व्यक्ति को कितना धन चाहिए उतना धन दे दो। नारद मुनि ने रेकमेंड किया हुआ है, दे दो जितना धन चाहिए इसको। तो कुबेर जी ने पूछा कि बताओ कितना चाहिए तुमको बताओ, तो उसने एक पात्र दिया, एक पात्र दिया उस व्यक्ति ने, बोला कि प्रभु इसमें दे दीजिए मुझे। तो पात्र को देखकर नारद कुबेर जी सोचने लगे क्या पांडे हम लोग टाइम बेकार कर रहा है, मांगा भी तो क्या हुआ एक छोटे से पात्र में मांगा, कुबेर जी अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ कर, क्योंकि भाई धनान चाहिए पूरे संसार का धन को, हमको एक अकाउंट डिपार्टमेंट से कितना टेंशन होता है, पूरे संसार का लेखा जोखा कर रहे हैं उनके पास कहाँ टाइम है। उन्होंने बोला अपने सेवकों को इसको दे दो, इसमें चाहिए दे दो, जाने दो इसको। हनु चंद लेके गए गोडाउन में खजाना के पास और वो व्यक्ति के उस पात्र में धन को डालने लगे। उस पात्र में धन को डालते गए डालते गए डालते गए, कुबेर का पूरा धन खाली हो गया, पूरा गोडाउन खाली हो गया, लेकिन वो पात्र नहीं भरा। सोचिए सारे सेवक लोग फोन लगाए कुबेर जी को कि प्रभु अनर्थ हो गया, हमारा पूरा धन संपत्ति खाली हो गया, लेकिन इसके पास जो पात्र है वो भरा ही नहीं, क्या करना है। कुबेर जी भी सोचने लगे क्या बात कर रहे हो। कुबेर जी भाग कर गए, देख रहे कि सच में पात्र में सब कुछ धन संपत्ति खाली हो गया, हमारा सब कुछ उस पात्र में चला गया, फिर भी पात्र नहीं भरा। कुबेर जी ने नारद जी को फोन लगाया, कैसे व्यक्ति को भेजा इधर, कैसे व्यक्ति को भेजा, पूरा हमारा खजाना खाली कर दिया। नारद ने सोचा कुबेर का खजाना खाली। नारद मुनि भागते हुए नारद मुनि आए। नारद मुनि आए बोले कि पात्र कौन सा है, मुझे वो पात्र देखना है, कैसा पात्र लेकर आया वो। तो नारद मुनि उस व्यक्ति के पास गए, उस पात्र को लिया और उसको पलट के देखा तो पात्र और कुछ नहीं, वो मनुष्य की खोपड़ी था जो कभी भरता ही नहीं। मनुष्य की खोपड़ी था वो, कभी नहीं भरता है, कितना भी धन संपत्ति उसको दे दिया जाए संसार का, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्टि नहीं आती है। ये है मनुष्य संसार का। इसलिए धन संपत्ति के पीछे पागल ना होके जो रियल संपत्ति है उसके पीछे पागल होना चाहिए, क्योंकि इस संसार की कोई भी धन संपत्ति कितना भी हो हम उससे संतुष्टि को नहीं प्राप्त कर सकते, संतुष्ट जीवन नहीं बिता सकते हम। तो इस प्रकार से ये जो राजा नभग के जो तीन पुत्र थे, सारी संपत्ति का बंटवारा अपने तीन लोगों में कर लिया और वो जो चौथा भाई था नाभाग उसको दिया ही नहीं। कुछ समय बीता, नाभाग गुरुकुल से वापस आए, वापस जब घर पे आए तो देखे कि संपत्ति का बंटवारा हो चुका है, तो उन्होंने पूछा मेरे भाग का हिस्सा किधर है, मैं किधर रहूं। तो तीनों भाइयों ने मिलकर बोला कि हर तुम्हारे भाग का हिस्सा हमने रखा है, चिंता मत करो। तो बोले कि दे दो ताकि मैं उसमें अपना जीवन यापन करूं, हमारा हिस्सा दे दो। तो भाइयों ने दिखा दिया कि जो बूढ़ा बाप है ना, ये तुम्हारा हिस्सा है, इसको तुम लो, इसको साथ में रखो। ये है कलयुग। रामायण के अंत में गरुड़ जी काकभुजंगी से पूछते हैं कि कलयुग का जब प्रारंभ होगा तो कलयुग कैसा है, कैसे पता चलेगा कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। तो रामायण के अंत में वर्णन है कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट के नाई। अगर इस संसार का कोई व्यक्ति अगर स्त्री के हाथों का कठपुतली हो जाता है, जहां पे भी स्त्री शब्द आता है ना, तो इतना समझिए कि पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। जब कोई मनुष्य स्त्री के हाथों का कठपुतली बन जाता है या उसके नचाने से नाचने लगता है बंदर की तरह मरकट की ना है, तो समझना कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। कलयुग के प्रारंभ में एक बार की घटना है कि युधिष्ठिर महाराज अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और दरवाजे पे भीम पहरा दे रहे थे कि राजा महाराज सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। गेट पे खड़ा है भीम, उसी समय एक व्यक्ति आया
और बोला कि मुझे महाराज को मिलना है। भागते भागते आया, महाराज को मिलना है। भीम बोला रुक भाई रुक, मैं इधर बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे से पहले बात कर। राजा अभी विश्राम करे, अंदर डिस्टर्ब के लिए नहीं जाना है, डिस्टर्ब मत करो उनको। तो व्यक्ति ने बोला कि मुझे राजा से ही मिलना है, मुझे कुछ प्रश्न है, मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो बोले क्या प्रश्न है पता, मैं उत्तर देता हूं, मैं कम विद्वान हूं, तुमको राजा से ही मिलना है, मैं उत्तर देता हूं ना, मेरे को प्रश्न पूछ। तो भीम ने इस प्रकार का बोला, तो बोला तुम उत्तर नहीं दे सकते हो। तो बोला बोल, मेरे को प्रश्न तो बहुत पहले। तो भीम अंदर नहीं जाने दिया, तो वो व्यक्ति ने भीम से प्रश्न पूछा कि एक मटके का जल, एक मटके में जल है भरा हुआ है मटका, वो जल जो मटका है अन्य चार मटके में उस जल को डाला जाता है, एक मटके में पानी भरा हुआ है और वो मटके को उठाकर चार मटके खाली उसके अंदर पानी को डाला जाता है और पुनः फिर से वो चार मटके का जो पानी है ना इस एक मटके में डाला जाता है, तो ये मटका भरता ही नहीं है। क्यों नहीं भरता है, प्रश्न पूछा। भीम सोच रहे ये कैसा प्रश्न है, अभी अभी डाला है एक मटके का पानी चार में और उसका चार का इसमें डाला तो भरना चाहिए, नहीं भर रहा है मतलब क्या है। सोच में पड़ गए, सब कुछ जाने लगे। वो व्यक्ति ने बोला मैं पहले ही बोला था जी महाराज को मिलना है, तो सर बुझाने लगे। बोले ठीक है जा भाई, सर दर्द हो रहा है मेरा, पता नहीं कैसा प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर महाराज गए, युधिष्ठिर महाराज तुरंत समझ गए, भीम भी आ गए। बोले कौन था जो ऐसा प्रश्न पूछा। बोले भीम वो और कोई नहीं, वो कलयुग था, अभी कलयुग का प्रारंभ हो चुका। एक पिता अपने चार पुत्रों का भरण पोषण करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको सेटलमेंट पूरा सब कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन वो चार पुत्र मिलकर रिटायरमेंट के समय उस पिता का देखभाल नहीं कर पाते हैं, उसका भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। ये संकेत था कलयुग आ चुका है। अभी इस कलयुग में सोचिए विचार करें कि अपने पुत्र अपने बच्चों के लिए पिता क्या नहीं करता है, सब कुछ क्या नहीं करता है, पूरा जीवन लगा देता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन अंत में जब बच्चों की सेवा करने वाली बात आती है तो उस समय सब के सब पिछड़ते, तुम्हारा है तुम्हारा है तुम्हारा है, हो गया ना। देखिए नभग नाभाग गुरुकुल से आया तो दे दिया बूढ़े बाप को, चलो बूढ़े बाप को दिया होता थोड़ा संपत्ति भी दिया होता, थोड़ा झोपड़ी बनाकर रह लिया होता, दे दिया बूढ़े बाप को, ये तुम्हारा बाप है लेके जाओ, यही तुम्हारे हिस्से में है, ये कलयुग। लेकिन नाभाग जो था गुरुकुल से शिक्षा लेके आया हुआ था, संस्कारी बालक था, इसलिए उसको पता था कि पिता की सेवा करने से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए उसने खुशी खुशी पिता की सेवा को और पिता को ले लिया, खुशी खुशी मैं ही करूंगा सेवा, कोई बात नहीं। लेकिन बेचारा करे क्या, रख तो लिया लेकिन यही सेवा भी कर रहा है लेकिन कुछ रहने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, बड़ी समस्या, संपत्ति ही नहीं था कुछ, बहुत समस्या। एक दिन की घटना है, पिता ने उस नभग ने अपने पुत्र नाभाग को बोला कि बेटा तुम चिंता मत ले, क्योंकि बहुत दुखी रहता था कि मैं अपने पिता की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो पिता ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, एक काम करो, यहां से कुछ दूर पे कुछ ब्राह्मण लोग हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि उनका यज्ञ ना सफल नहीं हो रहा है, वो कुछ ना कुछ भूल कर दे रहे हैं मंत्रों में जिसके कारण उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, इसलिए तुम जाओ उन ब्राह्मणों के पास और उनका मदद करो, क्योंकि तुम गुरुकुल से आया शिक्षा लेकर, वेद और शास्त्र को पढ़कर तुम गुरुकुल से आया है, उस सही मंत्रों का उच्चारण कर दो ताकि उनका यज्ञ पूर्ण हो जाए। नाभाग गया जहां पे यज्ञ चल रहा था, वहां पे नाभाग गया, जाकर उस ब्राह्मणों का मदद किया और उनका यज्ञ जो है पूर्ण हो गया,
और यज्ञ खत्म होने के पश्चात तो सारे के सारे ब्राह्मण स्वर्ग को जाने लगे, लेकिन देखा कि किसकी वजह से यज्ञ पूर्ण हुआ है हमारा, इस नाभाग की वजह से हुआ है। इसलिए जाते जाते उन्होंने क्या किया, यज्ञ का जितना भी संपत्ति था इस नाभाग को दे दिया, दे दिया नाभाग को, जितना भी यज्ञ की संपत्ति था सब नाभाग को दे दिया। नाभाग उस संपत्ति को लेकर घर पे आया, वो इतनी संपत्ति था, वो आजकल के साधारण जो हम यज्ञ करते हो ऐसे यज्ञ थोड़ी नहीं था, वो ऐश्वर्य पूर्ण सब कुछ सोना चांदी इत्यादि क्या क्या नहीं था उस यज्ञ में, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन था। वो जो संपत्ति इस नाभाग को मिला, वो संपत्ति जो लेकर आया ना, ये तीनों भाई के पास जितना संपत्ति था उसे कई गुना ज्यादा था संपत्ति, लेके घर पे आया। जब लेके घर पे आने लगा तो रास्ते में दक्षिण दिशा से एक विकराल स्वरूप वाला एक व्यक्ति प्रकट हो गया उसके सामने। प्रकट होकर बोलने लगा कि ये संपत्ति पे मेरा हक है, ये संपत्ति मुझे चाहिए। नाभाग ने बोला कि सारे ब्राह्मण प्रसन्न होकर मुझे ये संपत्ति को दिया है, ये संपत्ति मेरी है, आप कैसे बोल रहे हो कि संपत्ति आपकी है। ब्राह्मण हमारे ऊपर प्रसन्न हुए थे, तो उस विकराल व्यक्ति ने बोला कि संपत्ति पे मेरा हक है, मेरा संपत्ति है, चाहिए तो तुम जाकर अपने पिताजी को पूछ के आओ कि संपत्ति पे मेरा भाग, मेरा संपत्ति है, इस यज्ञ का जो संपत्ति है इस पे मेरा हिस्सा है, तुम जाके बोलो तुम्हारे पिताजी को, वो अगर बोलते हैं कि मेरा हक नहीं है तो मैं मान जाऊंगा। नाभाग उस संपत्ति को लेके घर पे गया, पिताजी को बोला कि रास्ते में एक व्यक्ति मिला और बोला कि संपत्ति में मेरा हक है, लेकिन पिताजी ब्राह्मणों ने तो मुझे ही संपत्ति दिया। आजकल का पिता होता तो रख लेता संपत्ति, लेकिन महान राजा थे वो, उन्होंने बोला कि बेटा वो जो व्यक्ति तुमको मिला दक्षिणी दिशा से प्रकट हुआ, वो व्यक्ति सच में उस व्यक्ति का ही संपत्ति उसी व्यक्ति का है, उसका ही अधिकार है, वो और कोई नहीं वो शिव जी है। यज्ञ की जो संपत्ति है उसमें शिव जी का अधिकार होता है, इसलिए बेटा तुम लेकर जाओ और एक खुशी खुशी उस व्यक्ति को उस जो तुमको मांगा उसको दे दो, संपत्ति दे दो, उनका हिस्सा है, उनका भाग है। पिताजी के कहे हुए निर्देश के अनुसार पूरी की पूरी संपत्ति आजकल के लोग कहते हैं चलो थोड़ा तो रख लेते हैं बाकी दे देते हैं, नहीं पूरा को पूरा लेके नाभाग गया वापस, दे दिया कि हाँ प्रभु पिताजी ने बोला इस पे आपका अधिकार है, इसलिए आप ही रखिए, आप ही रखिए इसको। श्री परम प्रसन्न हुए नाभाग के ऊपर, प्रसन्न होकर इस नाभाग को बहुत उपदेश दिया शिव जी ने, उपदेश तो दिया लेकिन पूरी की पूरी संपत्ति नाभाग को दे दिया शिव जी ने, लेके जाओ तुम, देखो पितृ सेवा, पितृ सेवा का फल, सब कुछ खत्म हो गया था लेकिन पिता की सेवा किया, पिता ने आदेश दिया ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों का मदद करो, ब्राह्मणों को मदद किया, इतनी संपत्ति की प्राप्ति, शिव जी का दर्शन हुआ और शिव जी ने सारी संपत्ति दे दिया, और आज नाभाग के पास इतनी संपत्ति हो गया कि सोच नहीं सकते हैं। तीन भाई के पास जो संपत्ति वो कुछ नहीं था, इतनी संपत्ति हो गया, ये तो संसार की संपत्ति है भक्तों, लेकिन एक उसको उस नाभाग को एक पितृ सेवा करने से एक रियल संपत्ति प्राप्त हुआ। ये संसार की संपत्ति जो कि कोई मायने नहीं रखता, अभी भी मैंने बताया कितना भी धन आ जाए उस धन का कोई महत्व नहीं है जीवन में, लेकिन एक रियल संपत्ति उस नाभाग को मिला। वो संपत्ति यह था कि इस
इस नाभाग का, नाभाग के जीवन में उसके पुत्र के रूप में महाराज अम्बरीश का जन्म हुआ है। ये वीरन संपत्ति प्राप्त हुआ पितृ सेवा करने से, पिता की सेवा करने से। धन तो प्राप्त हो गया, वो सेकेंडरी है, लेकिन रियल संपत्ति को प्राप्त हुआ है कि नाभाग का, नाभाग का जो पुत्र हुआ ना, महाभागवत निकले अम्बरीश महाराज, जिसका वर्णन भागवतम में बहुत विस्तार से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं उनको गुणों का। ये है पितृ सेवा करने का फल, रियल फल। अम्बरीश महाराज जिसके बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सप्तदीपपति महीम, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सप्तदीपपति महीम, सातों द्वीप के राजा निकले अम्बरीश महाराज। राजा तो थे, वास्तव में जो एक भक्त होता है ना, उसी के पास संपत्ति होता है। एक्चुअली लोग सोचते हैं कि भक्त बनने के बाद सब कुछ चला जाता है, वास्तव है। देखिए पहले के जितने भी राजा हुए ना, राजाओं की हिस्ट्री पढ़ी है, उनके पास कितनी संपत्ति हुआ करता था। ये क्यों हुआ करता था? क्योंकि भगवान के महान भक्त होते थे। लेकिन आज हम भक्ति को छोड़ दिया और संपत्ति को प्राप्त करना चाह रहे हैं। आज लोग भगवान को छोड़ रहे हैं, विष्णु को छोड़ रहे हैं और लक्ष्मी को पकड़ रहे हैं। लक्ष्मी पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाती है। लेकिन संसार के लोग लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए, लेकिन लक्ष्मी के पति को छोड़ दिया। कैसे आएगी वो लक्ष्मी, कैसे आएगी अपने पास? वो पतिव्रता स्त्री है, कैसे आएगी हमारे पास? अगर उस लक्ष्मी को लाना है, पकड़ना है, पास में रखना है, तो उसके पति को भी साथ में लेकर आओ, या तो उसके पति को लेकर आओ, पत्नी पीछे पीछे आ जाएगी बिना मेहनत के। इस सिद्धांत को लोग भूल चुके हैं, केवल लक्ष्मी को पकड़ना। ठीक, मान लो पकड़ भी लिया, पकड़ भी लिया तो किडनैप करने जैसा हो जाता है। पकड़ भी लिया तो संपत्ति आ गया ना, तो जाते हुए देरी नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, कब चला जाएगा। इसलिए कहते ना लोग, ये दो धन संपत्ति पैसा जो है ना, हाथ का महल है, कब खत्म, कब चला जाए, कब उड़ जाए, कुछ भरोसा नहीं। अम्बरीश महाराज जिसके बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सप्तद्वीपपति महीम, सातों द्वीप के राजा अम्बरीश महाराज, सातों द्वीप। लेकिन राजा तो थे, इतने द्वीप, सातों द्वीप के राजा थे, लेकिन राजा के साथ साथ वो भगवान के परम भक्त थे, परम भक्त। उसके उनके बारे में वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वंचासि वैकुंठ गुणानुवर्धने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंग दर्शनोदिशे तद्वेत गात्रास्पर्शे संगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमात्तुलस्यां रसनात्तदर्पित पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोक्तं श्लोक जनाश्रयति सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए इस अम्बरीश महाराज के बारे में बता रहे हैं कि सदैव इतने बड़े राजा थे, इतना जिम्मेदारी था उनके पास, लेकिन भगवान की भक्ति करने में, करना कोई सीखे तो इनसे सीखे। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अरे महाराज
मेरा धंधा बिजनेस है, कहां मेरे पास टाइम है। हम अपना कुछ एक धंधा बिजनेस को लेकर घर में एक पत्नी दो बच्चों को पालन करने के लिए इतना परेशान है और एक्सक्यूज देते रहते हैं। थोड़े में थोड़े कुछ पालन करना है, कुछ इतना परेशान रहते हैं। सोचिए कि सातों द्वीप का राजा कितना टेंशन रहता होगा उसके पास, विचार करिए। सातों द्वीप का राजा कितना टेंशन होता रहा, लेकिन वो कैसा था? सवै मनः कृष्ण पदारविंद, सदैव अपने मन को मनः कृष्ण पदारविंद, कृष्ण के चरण में उनका सदैव मन लगा रहता था। पदारविंद मन भगवान के चरण में वांछास वैकुंठ गुणान वर्णने, उनका जो वाणी था ना केवल एकमात्र भगवान के गुणान बात करने के लिए, उनकी कथा करने के लिए उनकी वाणी चलती थी, केवल कथा करते थे। देखिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करके उनके हर एक इंद्रियों को, करेर हरेर मंदिर मात ना दिशु, अपने हाथों को मंदिर मार्जन करने में लगाते थे, सुदीन चकारा, और कानों के वो भगवान का कथा श्रवण करने में लगाते थे, और आंखों को भगवान मुकुंद का दर्शन करने में लगाते थे, नाक को भगवान के जो चरण में जो तुलसी है ना उसको सूंघने, उसका सुगंध लेने के लिए, या फ्लावर का सुगंध लेने के लिए वो अपने नाक को लगाते थे, अपने हर एक इंद्रियों को, सिरों ऋषिकेश, अपने मस्तक को भगवान के चरणों में, भगवान के मंदिर में जाके प्रणाम करने में लगाते थे, अपने पैरों को भगवान के मंदिर जाने में लगाते थे। इस प्रकार से महाराज अम्बरीश, इतने शुद्ध भक्त निकले महाराज अम्बरीश। वर्णन है कि एक बार उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत का पालन किया, और जब द्वादशी का समय आया तो उस समय दुर्वासा ऋषि वहां पे आए, और नदी में स्नान करने के पश्चात वो आने वाले थे उनके इधर प्रसाद पाने के लिए द्वादशी का, लेकिन उस ऋषि को लेट होने लगा, और यहां पे द्वादशी पारायण का जो समय वो निकलता जा रहा था, तो वहां पे और भी ब्राह्मणों से अम्बरीश महाराज ने सलाह कर कि क्या करना चाहिए ऐसे संकट में, कि अभी दुर्वासा ऋषि अभी आएंगे लेकिन समय निकलते जा रहा है, और जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसे धर्म संकट में क्या करें, क्योंकि अगर ग्रहण कुछ नहीं करूंगा तो द्वादशी का, एकादशी का जो फल है उससे वंचित रह जाऊंगा। तो ब्राह्मणों ने सलाह दिया कि आपने निर्जला उपवास किया, एक बूंद पानी ले लीजिए। उस पानी को उन्होंने, एक बूंद ब्राह्मणों की सलाह पे पानी के एक बूंद को उन्होंने ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। अभी दुर्वासा मतलब तो आप समझते होंगे, श्राप देने में अव्वल नंबर है, विश्व रिकॉर्ड का विश्व विख्यात है। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए, इतना क्रोध हो गया कि मेरे आदेश से पहले तुमने पारायण कर लिया, मेरा बिल्कुल इंतजार नहीं किया, तुमने अपराध किया। दुर्वासा ऋषि इतना क्रोधित हुए कि अपने सर से एक बाल को नीचे और करके एक कृत्य, एक राक्षसी को प्रकट कर दिया। वो राक्षसी को इसने प्रकट किया कि अम्बरीश को मार डालो। वो राक्षसी प्रकट हुई एकमात्र उसका उद्देश्य अम्बरीश को मारना। दुर्वासा ऋषि ने इस कृत्य को प्रकट किया, लेकिन वर्णन है भागवत में, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इतनी क्रूर कृत्या जिसको देखने मात्र से व्यक्ति अपने प्राण को त्याग दे, ऐसी क्रूर कृत्या अम्बरीश के सामने आई, और अम्बरीश थोड़ा पैर भी पीछे नहीं हटे, बिल्कुल पीछे हटे तक नहीं। अम्बरीश कितना धीर पुरुष था, सोचिए हम तो रहते कृष्ण कृष्ण पाहि माम रक्षा माम, मेरी रक्षा करो नरसिंह भगवान, ऐसे संकट में ही याद आते हैं, बाकी समय नहीं याद आते हैं। करना भी चाहिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी अम्बरीश महाराज के बारे में बता रहे हैं ऐसा धीर पुरुष था, भगवान के ऊपर ऐसा विश्वास था उसको, ऐसा महान भक्त थे कि एक कदम भी पीछे नहीं हटे उस कृत्या को देखकर। और भगवान ने अम्बरीश की रक्षा किया उस कृत्या से, क्योंकि भगवान अहम भक्त पराधीन। जहां पे भगवान अहम भक्त पराधीन बोलते हैं ना, वहां पे ऐसे भक्तों के लिए भगवान बोलते हैं, उनके अधीन रहते हैं भगवान, अहम भक्त पराधीन। और भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस कृत्या को भगा ले दिया, दौड़ा दिया, उल्टे रास्ते भागना पड़ा उसको, क्योंकि भगवान ने सुदर्शन को ये आदेश देकर रखा हुआ है कि कभी भी मेरे भक्तों के ऊपर संकट आएगा तो मुझसे पूछने का इंतजार मत करना कि क्या करूं। जब मेरे भक्तों के ऊपर संकट आए तो तुरंत तुम चले जाना उसकी रक्षा करने के लिए, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं। तो कभी कोई प्रश्न होता है, हमारे ऊपर संकट आता है तो सुदर्शन क्यों नहीं बचाने आता, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर संकट आता है ना तुरंत हम अपना प्रयास कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए सुदर्शन आकर आधे रास्ते रिटर्न चला जाता है। हाँ, कहाँ इंतजार करता है, अपना प्रयास चालू रहता है, प्रार्थना भी चालू रहता है। कहाँ पूर्ण विश्वास, अवश्य रचिए कृष्ण विश्वास पालन नहीं। अम्बरीश महाराज ये रियल फल प्राप्त हुआ नाभाग को अपने पिता की सेवा करने से कि उसके घर में ऐसा महाभागवत अम्बरीश महाराज जन्म लिए। ये है पितृयोग की महिमा भागवत से। ताइए हम भागवत की ओर अग्रसित हो। भागवत की तीन परंपरा है। भागवत की जो प्रथम परंपरा है वो भगवान ने ब्रह्मा जी और शिव जी और ब्रह्मा विष्णु और महेश इनको दिया, पहली परंपरा है भागवत की। और दूसरी परंपरा जो है भगवान शंकरसन ने सनत कुमार को भागवत दिया, भागवत का ज्ञान। और सनत कुमार ने इसको सांख्य मुनि को दिया, और सांख्य मुनि ने देवताओं के गुरु बृहस्पति को दिया, और बृहस्पति ने पराशर ऋषि को दिया, और पराशर ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि को दिया, और पुलत्स्य ऋषि ने मैत्रेय मुनि को दिया, और मैत्रेय जी ने विदुर को दिया, जो कि हम भागवत के तीसरे स्कंध में मैत्रेय विदुर संवाद सुनते हैं ना, मैत्रेय जी ने विदुर को प्रदान किया। ये भागवत की दूसरी परंपरा है। लेकिन और एक परंपरा है भागवत की तीसरी परंपरा, जिस परंपरा के अंतर्गत हम सभी आज भागवत को सुनने जा रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं, वो तीसरी परंपरा आई है। हमारी कौन सी परंपरा है वो देख लेते हैं। भगवान नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ये भागवत प्रदान किया भगवान ने, और ब्रह्मा जी ने इससे अपने पुत्र नारद मुनि को दिया, और नारद मुनि ने इसको वेदव्यास ऋषि को दिया, और वेद व्यास जी ने जब इस महापुराण भागवत की रचना किया दिया, क्योंकि वेद व्यास ऋषि ने अनेक पुराणों की रचना किया, अनेक अनेक पुराणों का वेद व्यास जी ने रचना किया, और अंत में जब भागवत महापुराण की रचना किया, जिसके बाद उनको संतुष्टि प्राप्त हुआ, क्योंकि सारे पुराणों की रचना करने के बाद उनको संतुष्टि नहीं मिला था, लेकिन नारद मुनि की कृपा से, उनके गुरु की कृपा से जब प्रेरणा मिली और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ की रचना जब किया, तब जाके वेदव्यास मुनि को संतुष्टि प्राप्त हुआ। लेकिन बूढ़े हो चुके थे, सोचे कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि महाभागवत निकले और इस भागवत का प्रचार प्रसार करे, तब जाके सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ उनके घर में। और सुखदेव गोस्वामी ने इसको गंगा के तट पे परीक्षित महाराज को सुनाया, ये भागवत कथा। और परीक्षित महाराज को सुना रहे थे तो उसमें सूत गोस्वामी भी वहां पे बैठे हुए थे, कथा सुन रहे थे, जिसको इंगित कर करके सुखदेव गोस्वामी कथा को कर रहे थे, इंगित करते हुए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ये देख रहे थे कि यही सूत जाकर आगे भागवत की प्रचार प्रसार करेगा। तो सूत गोस्वामी भी वहां पे बैठे हुए थे, और सूत गोस्वामी से फिर सूत गोस्वामी ने इसे नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों को ये भागवत भगवत प्रदान किया, जिस 88,000 ऋषियों में जो सौनक ऋषि से उस श्रेष्ठ ऋषि से उन लोगों को दिया। ये भागवत की तीसरी परंपरा और नैमी शारद में जो भागवत सूत गोस्वामी नैमी शारद के ऋषियों को सुना रहे वही भागवत आज हमारे पास है, वही हम श्रवण कर रहे हैं। ये है भागवत की तीसरी परंपरा। इसलिए इस भागवत का श्रवण करते समय ध्यान से सुनना चाहिए। वैसे मैं पिछले दो दिन से देख रहा हूँ सब भक्त लोग बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी एक उत्साह प्राप्त हो रहा है बोलने के लिए, बताने के लिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जितना हो सके उतना बता दिया जाए, उत्साह मिल रहा है क्योंकि आप लोग इतना ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद ऐसे ध्यान पूर्वक श्रवण करने वाले श्रोता मिले, इसलिए इसको ध्यान से, क्योंकि जो ध्यान से श्रवण नहीं करेगा ना सो गया, तो सो गया मतलब खो गया, जो सोया वो खोया और जो जागा हो पाया। सोना नहीं चाहिए, ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। रामायण का वो प्रसंग याद करिए जब भगवान राम को वनवास हुआ, भगवान रामचंद्र वनवास का वेश धारण करके जब वनवास के लिए निकल पड़े, उस समय पूरा अयोध्यावासी जिनके प्राण थे भगवान राम, इतना प्रेम करते थे अयोध्यावासी, वर्णन है कि भगवान राम के जाने के बाद 14 साल तक अयोध्या में दीपक नहीं जला, इतना प्रेम करते थे भगवान राम से अयोध्यावासी, दीपक नहीं जला। और जब भगवान आए तब अयोध्या को दीपक से सजाया गया, तब सजाया गया, इसको दशहरा कहते हैं, सजाया गया। इतना प्रेम करते थे अयोध्यावासी, और भगवान जब निकल पड़े तो अयोध्या का सारे प्रजा सब भगवान के साथ निकल पड़े, हम भी वन में जाएंगे क्योंकि इतना प्रेम करते थे। भगवान के साथ सारी प्रजा निकल गई, और निकल कर भगवान भी चल रहे, और जब तामस नदी का किनारा आया और संध्या समय हुआ, रात्रि विश्राम करने का समय हुआ, तो उस समय वहां पे सारी प्रजा को रोक दिया भगवान ने और बोले कि यहीं पे आज रात्रि निवास हम इसी तामस नदी के किनारे करेंगे। विश्राम तो किए भक्तों, लेकिन रात्रि में भगवान सुमंत को उठाए, बोले रथ निकालो। अर्ध रात्रि में पूरी प्रजा सो रही है, अयोध्यावासी सारी प्रजा सो रही है, भगवान ने रथ को निकलवाया और सुमंत्र को बोला चलो रथ लो और लेकर हम निकलते हैं। भगवान राम ने सबको छोड़ दिया और रथ पे बैठे निकल गए रात्रि में। प्रश्न उठता है कि क्या दोष था उन अयोध्यावासियों का जो कि इतना प्रेम करते थे प्रभु राम से, फिर भी भगवान ने क्यों छोड़ दिया उनको? तो एक आचार्य वर्णन करते हैं, एकमात्र कारण था जिसको छोड़ने का प्रभु रामचंद्र को, क्योंकि भगवान ने एकमात्र कारण की वजह से छोड़ दिया, क्योंकि अयोध्यावासी सो गए, रात्रि को सो गए और भगवान चले गए। इसलिए कथा का श्रवण करते समय नहीं सुनना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ खो बैठेंगे, नहीं सुनना चाहिए, भगवान चले जाते हैं। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, है ना, सुने हम लोग जागृत होकर अगर हम गायन करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां पे तत्र तिष्ठामि नारद, वहां सदैव रहता हूं मैं नारद, सदैव रहता हूं। लेकिन जो सो गया, अयोध्यावासी सो गए, प्रभु निकल गए, वहां से रिटर्न आना पड़ा अयोध्यावासियों को, अभी कहां जाएंगे लौटते हुए, रिटर्न आना पड़ा अयोध्या, और 14 साल तक तपस्या उनको भी करना पड़ा, ये हुआ है। तो इसलिए भागवत का मैं प्रारंभ से पहले इसलिए बता दे रहा हूं, इसका बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो आइए भागवत का शुरुआत और भागवत का प्रथम स्कंद पहला अध्याय पहला नंबर श्लोक, अभी हमारी भागवत शुरू हुई। संभव नहीं है कि 7 दिन में पूरी भागवत खत्म किया जाए, होता नहीं है, नहीं संभव है, लेकिन हम यथामति प्रयासिता यथा समय अनुसार हम भागवत के कुछ प्रसंगों को सुनने का प्रयास करेंगे जितना हो सके उतना। तो भागवत का प्रथम स्कंद वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम डेली करते हैं ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जन्माधस्य यतो मया दितरता चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियन्ते सूरय तेजो आरे हृदय था विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाश्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि।
वेदव्यास मुनि भागवत का प्रारंभ करते हैं इस मंगलाचरण को करते हुए, भागवत महात्मा को भी बताते हुए मंगलाचरण वेदव्यास जी ने किया सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का मंगलाचरण वहां पर भी सुखदेव गोस्वामी करते हैं विश्वपति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय। और भागवत जब प्रारंभ किया तो भागवत के प्रारंभ में भी सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास ऋषि मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। इस संसार में सत्य कौन है, परम सत्य कौन है? तो यहां पे वेद व्यास मुनि यहां पे बता देते हैं कि सत्यम परम धीमहि, सत्य कौन है, परम सत्य कौन है? तो कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव, भगवान है कृष्ण जो कि परम सत्य है, परम सत्य है। इस संसार का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, इस संसार का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां पे दूर कर रहे हैं वेद व्यास जी भगवान का मंगलाचरण करके। इस संसार का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है पता है? भगवान कौन है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है संसार का। सोचिए विचार करिए, अगर मुसलमान को पूछ दिया जाए कि भगवान कौन है तो सारे मुसलमान एक ही बात बोलेंगे कि भगवान कौन है, वो है अल्लाह। क्रिश्चियन को पूछ दिया जाए, हजारों क्रिश्चियन है संसार में, क्रिश्चियन को पूछ दिया जाए कि भगवान कौन है तो कहेंगे जीसस क्राइस्ट। लेकिन हिंदू को, सनातन धर्मियों को, हिंदू को पूछ दिया जाए कि भगवान कौन है तो सबसे पहले सर खुल जाएंगे, फिर सोचेंगे कौन है, गणेश जी नहीं, नहीं दुर्गा जी नहीं, अभी अभी ये मौसम चला नहीं, ये है भगवान, अभी ये भगवान है, ये बापू साईं बाबा इत्यादि, क्या क्या इतना बता देंगे, इतना बोलते जाएंगे भी है, वो भी है, सब छोड़ो तुम भी हो मैं भी हो भगवान, सब का काम खत्म, कौन इतना टेंशन लेगा। कितना बड़ा प्रश्न है इस संसार का, परम सत्य कौन है, भगवान कौन है? सुखदेव व्यास ऋषि इस मंगलाचरण को करते हुए ये स्थापित कर देते हैं कि परम सत्य कौन है, सत्यम परम धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान कृष्ण है, भगवान वासुदेव जो कि परम सत्य है। अब क्या चाहिए बताइए, स्थापित कर दिए, लेकिन फिर भी लोग बापू बापा इसमें इसमें फंसे हुए, क्या करें। त इस प्रकार से वेदव्यास ऋषि सबसे बड़े कंफ्यूजन जो संसार में है उसको दूर किए और सत्यम परम धीमहि जो कि भगवान परम सत्य है इसका इसको स्थापित किया उन्होंने। तो प्रश्न उठता है, उठा सकते हैं कोई भी प्रश्न, भगवान कृष्ण ही परम सत्य क्यों है, गणेश भी क्यों नहीं है, दुर्गा क्यों नहीं है, अन्य देवी देवता इतने समय क्यों नहीं आए, लोग परम सत्य कृष्ण ही क्यों है परम सत्य। तो वेदव्यास मुनि इस बात का वर्णन करते हुए कहते जन्माद्यस्य जन्म आदि अस्य, इस संसार के सृजन जन्म का भी कारण वही है, पालन भी वही करते हैं और संहार भी वही करते हैं। मया दशेन प्रकृति सूयते सचराचर, ये जो प्रकृति है उनके अंदर में काम करती है, उनके कंट्रोल में ही रहती है प्रकृति, प्रकृति के कंट्रोल में हम सब है, और प्रकृति किसके कंट्रोल में है, भगवान के कंट्रोल में है, क्योंकि सृजन पालन और संहार ये तीनों करते, इसलिए यही परम सत्य है, कृष्ण ही परम सत्य है, क्योंकि तीनों कार्य करते हैं, उनकी अधीनता में ये तीनों कार्य होता है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। और विज्ञा विज्ञा स्वराट विज्ञा, सब कुछ जानने वाले हैं वो, हम अपने मन के अंदर क्या सोच रहे हैं वो भी भगवान जानते हैं, भगवान को भी जानते हैं, इसलिए उनको भिक्ख कहा गया है, सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे कुछ रुका नहीं, हाँ कुछ छूटा नहीं है संसार का, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि सृजन भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, संहार भी करते, तो क्या बचा जानने के लिए, इसलिए कहते हैं भिक्ख स्वराट, वो स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है, बाकी जितने भी देवी देवता है वो परतंत्र है, अंडर में है, इंद्र बारिश दे रहा है, डर है उसको, बारिश नहीं प्रदान करूंगा, मेरा सिरा बराबर नहीं करूंगा तो डिसमिस कर दिया जाएगा मुझे, डर है उसको, जो कुछ भी कार्य चल रहा है संसार में, हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई देवता है वो कर रहा है, लेकिन नहीं गए तो उसको हटा दिया जाएगा, मजबूर है वो करने के लिए, यही तो स्थापित किए ना भगवान, जब इंद्र ने बारिश, जब नंद महाराज हर साल पूजा करते थे, इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन अभी कृष्ण प्रकट हुए तो कृष्ण ने बालक को उसी समय बोला इतना तैयारियां क्यों हो रही है, नंद महाराज ने कहा कि इंद्र की पूजा करनी है, भगवान ने बोला इंद्र की पूजा क्यों करनी है, बोले कि सदियों से परंपरा चलते आ रहा है, बोले परंपरा चलते आ रहा है मतलब वही करना है, लेकिन बेटा इंद्र बारिश देता है और बारिश से क्या होता है कि घास इत्यादि सब होते हैं जिससे हमारी गैया चलती है और गैया हृष्ट पुष्ट होती है, उनका पेट भरता है, तब जाकर हम लोग का पालन पोषण होता है, उसके कारण होता है, उसकी कृपा से भगवान वहां पे स्थापित किए कि इंद्र का काम है बारिश देना, आप पूजा नहीं करोगे तो भी वो बारिश देगा, भगवान ने बोला कि समुद्र के अंदर बारिश की क्या जरूरत है, क्या पानी की कमी है समुद्र के अंदर, फिर भी वहां भी बारिश देता है वो, उसका काम है बारिश करना, उसका काम है बारिश देना, सब लोग इसलिए कर सृजन पालन और संहार, इसलिए क्या कहा स्वतंत्र मेरा विज्ञ स्वराट, स्वतंत्र है परतंत्र नहीं है, बाकी सब लोग अधीन है, अधीन में है सब, किसी न किसी के अधीन में है, इसलिए भगवान को सत्यम परम धीमहि बताया गया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जो कि ब्रह्मा जो कि सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी प्रकाश दाता कह रहे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि जो ब्रह्मा है उनके हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया जिससे वो इस सृष्टि को किया उन्होंने, ऐसे भगवान का मैं ध्यान करता हूं। वेद व्यास ने भागवत के इस प्रथम श्लोक में भगवान कौन और भगवान के विषय में वर्णन करते हैं। दूसरा भागवत का दूसरा श्लोक,
धर्म प्रोचित कैतवत्र परमो निर्मत्सरानां सतां वेद्यं वास्तवमस्तु ते शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर सत्तोरेतरत्र कृतिभिः सुशोभितक्षणा।
दूसरे श्लोक में भागवत के वेदव्यास मुनि कहते हैं कि धर्म प्रोचित कैतवत्र परमा, इस भागवत के विषय वस्तु को बताते हैं। धर्म प्रोचित कैतवत्र, भागवत के विषय वस्तु का परिचय देते हैं कि कपट से मुक्त है, बिल्कुल इसमें कपट है ही नहीं, पूर्ण रूप से शुद्ध है, कपट से मुक्त है, कहता हूं कोई स्थान नहीं है कपट का इस भागवत में, कोई स्थान नहीं है। वेदव्यास मुनि कहते कि मैं अनेक पुराणों की रचना किया, अनेक पुराणों का रचना किया, उसमें कुछ ना कुछ कपट है। शिव पुराण लिखा तो शिव जी के बारे में क्यों बताया, गणेश जी का लिखा तो गणेश जी के बारे में बताया, वही महान है, शिव जी का पुराण वही महान है, वही पूर्ण है। मैंने कपट किया अन्य पुराणों में, मैंने कपट किया क्योंकि जिसके बारे में लिखा उसको महान बताया मैंने, लेकिन ये भागवत महापुराण जो लिखा इसमें कोई कपट नहीं है, बिल्कुल कपट नहीं है, मुक्त है इसमें। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो, कोई कपट नहीं है। और ये जो भागवत है त्रिताप से मुक्त करने वाला है, जिसका वर्णन वेदव्यास मुनि भागवत के महात्म्य में उसी को का वर्णन करते हैं,
सच्चिदानंद रूपाय विश्वपति आदि हेतवे तापत्रया,
तीन ताप से
तापत्रया विनाशाय,
तीन तापों से मुक्त करने वाला इस संसार का जो त्रिताप है, अधिभौतिक अधिदैविक और अधिआध्यात्मिक, जिसका वर्णन हम सुने पिछले सत्र में, इससे मुक्त करने वाला है, इसमें बिल्कुल कपट का स्थान नहीं है इस भागवत में। आगे पढ़ते हुए वेदव्यास ये मैं संक्षिप्त में बताते जा रहा हूं क्योंकि अब ये जन्मादश्य का जो है पूरा वर्णन कर लेंगे, सात दिन वर्णन कर सकते हैं, भागवत के एक एक श्लोक के ऊपर सात सात दिन तक बोला जा सकता है, इसलिए संक्षिप्त में ही आगे बढ़ते हुए वेदव्यास मुनि कहते हैं, निगम कल्प तरुर गलितं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरभो रसिका भूरि भावुका। मानो वेदव्यास मुनि निमंत्रण दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, सबको निमंत्रण दे रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं वेदव्यास मुनि। क्या इन्विटेशन दे रहा है कि निगम कल्प तरुर गलितं फलं, ये जो भागवत है ना एक कल्प तरु फल है, लेकिन कैसा फल है, गलितम फलम, बहुत मिठास है, बिल्कुल घुटले नहीं है, ऐसा फल है वो, और ऐसा फल जिसको सुख मुखादि मृत द्रव संयुत, एक तो फल की वो तो महिमा है,
कल्प रुच कल्प का तरु का फल है वो, उसकी महिमा है, कलितम फला, बहुत मिठास है, बिल्कुल गुठली नहीं है उसमें, उसकी महिमा तो है, लेकिन साथ में क्या है, सुखम खाद्य मृत द्रव संयुतम, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुख से वो चखा हुआ है तो किस उसकी मधुरता और बढ़ गई। क्योंकि आपको पता होगा कि फल जब होता है ना, उसको कोई तोता कोई शुक्र अगर उसको चोट मारता है ना, वो और मिठास बढ़ जाता है उसका। इसी प्रकार से भागवत जो है एक गलितम फलम, बहुत मधुर फल है, लेकिन उस मधुर फल को भी सुखदेव गोस्वामी ने चख लिया है, इसलिए वो मधुराद मधुर हो चुका है। तो वेदव्यास ऋषि निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ पिबत भागवतम रस मालय, आओ इस रस को पियो पियो, कोई मेहनत नहीं है, केवल पीना है, अपने कानों से केवल पीना है, इस रस को पियो बस। पिबत रस मालय, रस मालय एकदम जूस के समान है, पियो केवल। इस प्रकार से वेदव्यास ऋषि मंगलाचरण करते हुए प्रारंभ करते हैं भागवत को। द्वापर का अंत हुआ, द्वापर के अंत में अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ। तो कलयुग के प्रारंभ में नैमिषे ऋषय शौनकादय सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम मागता। कलयुग के प्रारंभ में नैमिषारण्य स्थान पे, जो आज लखनऊ के निकट है, नैमिषारण्य, नैमिषारण्य स्थान पे नैमिषे ऋषयः शौनकादयः, शौनक ऋषि जो प्रमुख थे 88,000 ऋषियों के साथ, उस नैमिषारण्य में पहुंचे। किस उद्देश्य से पहुंचे? एकमात्र उद्देश्य था एकत्र होकर यज्ञ करना, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ हो चुका था, कलयुग के जीवों का कैसे उद्धार हो, कलयुग के जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए ये सब एकत्रित हुए। वास्तव में एक ऋषि एक महात्मा होते हैं ना, वो वास्तव में वो समाज सेवा करते हैं। आज संसार के लोग कितने लोग समाज सेवा अपने आप को मानते हैं, लेकिन वो समाज सेवा ना केवल पैसे के बल पर चलता है, वो गया तो समाज सेवा भी सब भक्ति निकली, समाज सेवा की भक्ति निकली, कुछ मिल रहा है इसलिए समाज सेवा का टप्पा लगा रहे हैं ऊपर। लेकिन वास्तव में अगर समाज सेवा का कोई करता है तो संसार के ऋषि महात्मा समाज सेवा करते हैं। कलयुग का प्रारंभ हुआ, उन्होंने देख लिया कि कलयुग के जीवों की क्या स्थिति होने वाली है, इसलिए उनके लाभ के लिए इतने सारे ऋषि इकट्ठा हुए यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। और कितना दिन तक यज्ञ करना है? सहस्त्र समागता, एकत्रित हुए और हजार साल तक, हजारों सालों तक हम यज्ञ करेंगे, केवल इस कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए यज्ञ करेंगे हम। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प लिया यज्ञ करने का, उसी समय उन्होंने देखा कि सूत गोस्वामी का आगमन हो रहा है। जैसे ही उनको पता चला कि सूत गोस्वामी यहां से होकर निकल रहे हैं, आ रहे हैं सूत गोस्वामी, जैसे ही उनको पता चला उसी समय ये सारे ऋषिगण बैठ के मीटिंग किया, कि क्या करना चाहिए, अभी यज्ञ करना चाहिए या भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, दोनों में क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि हम तो बैठे यहां जीवों का कल्याण करने के लिए संसार के, तो क्या उचित है, क्योंकि महाभागवत सूत गोस्वामी पर जिनके मुख से कथा निकलते ही रहता है, भागवत कथा ऐसे महाभागवत का प्राकट्य हो रहा है, जैसे महाभागवत का प्राकट हो रहा है तो उनके मुख से हम कथा सुने या यज्ञ करें, मीटिंग बैठाए और निर्णय यही निकला कि यज्ञ को छोड़कर शुद्ध गोस्वामी के मुख से कथा श्रवण करना है, क्योंकि इससे बड़ा चीज इस संसार के उद्धार के लिए कुछ और नहीं हो सकता है। ये निर्णय आया, बैठाया गया शुद्ध गोस्वामी को आसन पे और सारे उस नैमिष शरण में ऋषि बैठ कर कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। नैमिष शरण उस स्थान का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रह्मा जी का जो मनोमय चक्र है ना, जब ब्रह्मा जी का मनोमय जब चक्र चला तो उस समय वो मनोमय चक्र उस स्थान पे गिरा, इसलिए उसका नाम नैमिष। और इतना ही नहीं, ये सारे ऋषिगण नैमिष शरण में बैठ के कथा को सुन रहे हैं। एक आचार्य लिखते हैं कि भागवत कथा कोई कहीं में भी सुने वो स्थान नैमिष शरण है। कैसे नैमिष शरण है, हमको लखनऊ जाके नैमिष शरण में बैठने की जरूरत नहीं है, जहां कथा का आयोजन हुआ वही नैमिष शरण है। नैमिष शरण का अर्थ वो बताते हैं कि जहां पे मन रूपी है जो चक्र है, मन रूपी जो चक्र है जहां पे स्थिर हो जाता है उसको नैमिष शरण बोलते हैं। हमारा मन रूपी चक्र कितना भागता रहता है, मैं एक शब्द बोलता हूं अमेरिका, मन गया अमेरिका, सोचिए इससे फास्ट क्या हो सकता है। तो ये मनोमय चक्र जो हमारा मन है जिस जगह पे स्थिर हो जाता है उसको नैमिष शरण कहते हैं। तो विचार करिए हम अपने मन को यहां पे स्थिर किए हुए हैं, इसलिए ये स्थान भी नैमिष शरण से अलग नहीं है। और ऐसे भी गौ माता बीच बीच में आवाज लगाकर वो संतुति देती रहती है, सत्य सत्यम परम धीमहि गाय माता, यह स्थान भी नैमिष शरण। वैसे भी यह नैमिष शरण ही था क्योंकि गौ माता है, हमें बोला ना जिस जगह पे गौ माता निवास करती है वहां पे सारे तीर्थ, सारे तीर्थ वहां पे निवास करते हैं। नैमिष शरण है मन जहां पे स्थिर हो जाए वो नैमिष शरण है। तो यहां पे सब कथा सुन रहे हैं और बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, अपने मन को कथा में लगाए हैं, इसलिए स्थान भी नैमिष शरण है। तो आइए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। ऋषि शुद्ध गोस्वामी के मुख से कथा का श्रवण करने लगे और शुद्ध गोस्वामी प्रारंभ किए भागवत कथा। अरे भागवत जहां पे भगवत गीता समाप्त होता है और वहीं से भागवत की प्रारंभ होता है, वहीं से भागवत स्टार्ट होता है। गीता के अंत में समाप्ति पे वहां पे संजय एक बात को प्रस्तुत करता है अंत में, क्योंकि अंत में कुछ चीजें बताया गया उसमें बहुत दम होता है ना, बहुत दम होता है। गीता के अंत में कहा है संजय ने, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर महान। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां भी योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर, वहीं पे श्री है वहीं पे विजय है। मतलब गीता खत्म हुआ और धृतराष्ट्र को संजय ने बता दिया कौन मरने वाला कौन जिंदा होने वाला, फिर भी समझ में नहीं आया धृतराष्ट्र को, ऐलान कर दिया। तो गीता का अंत और भागवत का प्रारंभ हुआ। श्रवण प्रादेशि संसार के कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं, जिसमें 88,000 ऋषियों में से प्रमुख ऋषि देव है वो कौन है, सौनक ऋषि। प्रश्न सौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं शुद्ध गोस्वामी से कि छह, टोटल छह प्रश्नों को उन्होंने पूछा, बस यही जो छह प्रश्न है ना, इसी का उत्तर है पूरा भागवत। छह प्रश्नों का उत्तर पूरा भागवत। जो छह प्रश्न पूछे शौनक ऋषि, इन्हीं को समझाते हुए उत्तर देते हुए सुध गोस्वामी ने जो बताया वही है संपूर्ण भागवत। तो सार रूप में हम पूरी भागवत को तो कर नहीं सकते हैं सात दिन में, इसलिए इन छह प्रश्नों को जिसका एक्सप्लेनेशन पूरी भागवत है उसको जान लेते हैं। क्या छह प्रश्न पूछे? सबसे पहला प्रश्न पूछा शौनक आदि ऋषि कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है और जीवों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि जीवों का कल्याण करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। बोलो, कल्याण करने के लिए एकत्रित हुए थे, इसलिए प्रश्न भी पहला यही पूछा कि जीवों का कल्याण कैसे होगा और समस्त शास्त्रों का सार क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आज हम सब अपने उद्देश्य को भूल चुके हैं, मनुष्य जीवन को क्यों ला इसको भूल चुके हैं। मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भूल गए, इसलिए हम कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन जी रहे हैं, जानवर की तरह इसलिए जीवन जी रहे हैं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, यह दूसरा प्रश्न शौनक आदि से पूछे। तीसरा प्रश्न, साक्षात भगवान स्वयं क्यों प्रकट हुए यहां पे, क्या जरूरत था? भगवान तो अपने धाम में बैठे बैठे हर एक चीज करने सकने में सक्षम थे, स्वतंत्र थे, स्वतंत्र है ना, विज्ञ स्वराज स्वतंत्र है, क्या जरूरत हुआ भगवान यहां पे क्यों प्रकट हुए? तीसरा प्रश्न, क्यों आए भगवान अपने धाम को छोड़कर? और भगवान आए तो भगवान का चरित्र क्या है, क्या चरित्र है उनका? चौथा प्रश्न, पांचवा, उनके आए तो आए, अनेक अवतार भी आए, भागवत के प्रथम स्कंध में 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, अनेक अवतार भी आए, उन अवतारों की लीला कथा को उनको श्रवण कराइए, अवतारों की कथा को श्रवण कराइए उनको, अवतारों की कथा बताइए। और अंत में छठा प्रश्न, भगवान जाने के बाद जब लीला समाप्त किए, भगवान इस धराधाम पे भगवान ने जब अपनी लीला समाप्त किया और जब अपने धाम को वापस गए द्वारका लीला समाप्त करने के पश्चात, तो भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? ये छह प्रश्न, इसी का उत्तर देते हुए सुध गोस्वामी ने भागवत को प्रारंभ किया। और इतना ही नहीं, शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि विस्तार से बताइए, विस्तार से बताइए, आप विस्तार से बताइए। सुध गोस्वामी इन छह प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। कि एक समय की बात है, उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध का समाप्त, मैंने पहले बताया गीता समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त हुआ और भागवत का प्रारंभ हुआ। तो उस समय की बात, महाभारत का 18वां दिन, महाभारत का 18वां दिन, कौरव सारे के सारे मारे गए, है ना, सब लोग मारे गए। ये महाभारत एक ऐसा युद्ध हुआ, संसार में दो युद्ध ऐसे हुए जो कि दोबारा वैसा युद्ध कभी नहीं हुआ, एक है महाभारत और दूसरा है देवासुर संग्राम, बहुत बड़े बड़े युद्ध हुआ। सवर्ण, ये ऐसा युद्ध था महाभारत युद्ध जिसमें
सारे के सारे जितने भी कौरव पक्ष में थे सब लोग मारे गए। वर्णन आता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद 60 करोड़ महिलाएं विधवा हो गई। 60 करोड़ महिलाएं विधवा हुई महाभारत युद्ध समाप्त के बाद। महाभारत का युद्ध समाप्त 18वां दिन, और महाभारत के 18वें दिन में टोटल उस युद्ध स्थल में केवल कौरवों के लोग नहीं मारे गए थे, पांडवों के भी सेना से मारे गए ना, सब मारे गए, केवल कौरव के नहीं, सबके सब मारे गए। महाभारत के 18वें दिन केवल टोटल 12 लोग बचे थे बस। युद्ध किया पूरा संसार विश्व, बचे कितने? 12, केवल 12 लोग बचे, उसमें से 8 लोग पांडव के पक्ष में बचे और 4 लोग कौरव के पक्ष में बचे। अभी 8 लोग ये कौन कौन है पांडव के पक्ष में? तो सबसे पहले भगवान कृष्ण, उनको तो बचना ही था। उसके बाद 5 पांडव, कितने हुए? 6। उसके बाद सात्यकी, ये सात्यकी भगवान कृष्ण का सारथी था। द्वारका लीला आप जब सुनेंगे ना, सात्यकी कृष्ण के सारथी रहे, वो भी युद्ध कर रहे थे कि बचे, कृष्ण के सारथी जो थे। और एक व्यक्ति बचा पांडवों के पक्ष में जिसका नाम था युधिष्ठिर। अभी ये युधिष्ठिर कौन था? ये युधिष्ठिर था धृतराष्ट्र का पुत्र। धृतराष्ट्र के टोटल कितने पुत्र है? 100, 101। 100 जो थे गांधारी से प्राप्त हुए थे और एक पुत्र ना दासी पुत्र था और जिसका नाम था युधिष्ठिर। तो जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, दोनों सेना एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, तो उस समय ऐलान किया गया अगर कोई चाहता है कि अभी भी इधर का उधर होना तो हो सकता है, एक मौका दिया गया कि अगर कोई चाहता है कि पांडवों के पक्ष में से कौरव में जाना हो जा सकता है, और कोई चाहता है कि कौरवों से पांडव में आए वो आ सकता है, ऐलान किया गया। उस समय युधिष्ठिर जो था कौरव के पक्ष में था, लेकिन निकल के वो पांडव के पक्ष में आ गया, बच गया, बुद्धिमान निकला, बच गया। 8 लोग पांडव के पक्ष में बचे, 8 लोग। अभी कौरव के पक्ष में कौन 4 लोग बचे? टोटल 12 ना, अभी 4 लोग कौरव के पक्ष में। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जो कि चिरंजीवी है, कोई मार नहीं सकता उसको, चिरंजीवी है। अश्वत्थामा बचा। दूसरा कृपाचार्य, कृपाचार्य बचे जो कुलगुरु थे। और कृतवर्मा, तीसरा कृतवर्मा, और चौथा वृषकेतु। वृषकेतु जो था एक कर्ण का पुत्र था, प्रतापी राजा, प्रतापी जो था ना कर्ण, उसका पुत्र था वृषकेतु। कौन कौन? अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और वृषकेतु, ये 4 लोग कौरव के पक्ष में बचे थे। महाभारत का 18वां दिन, 18वें दिन दुर्योधन धराशायी पड़ा था, उसके जंघा को तोड़ दिया गया, भीम ने उसके जंघा को तोड़ दिया। अभी क्यों तोड़ा है सबको पता है, तोड़ दिया जंघा को, घायल पड़ा था, मरा नहीं था, सांस चल रही थी, घायल पड़ा हुआ था। पांडव के सब लोग अपने अपने शिविर में चले गए। रात्रि का समय ये जो चार लोग थे जो कौरव के पक्ष में जे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और वृषकेतु, ये चारों अपने राजा दुर्योधन को देखने गए। धराशाही पड़ा हुआ है बेचारा, तड़प रहा है, देखने गए। जब देखने गए तो तड़प रहा था, उसके दुख को उस इन लोगों को देखा नहीं गया। दुर्योधन तड़प रहा है, दुख को देखा नहीं गया। विशेष करके जो है अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा देख करके, मित्र तुम इतना दुखी हो, देख रहा है मित्र हमारा इतना दुखी है, तड़प रहा है, उसको सहा नहीं गया। तुरंत ही अश्वत्थामा निकलकर उस युद्ध क्षेत्र से रात्रि के समय में कहां पे पहुंचा, कौरव के शिविर में पहुंचा, जहां पे कौरव पांडव के शिविर में, जहां पे पांडव शयन कर रहे थे, सो रहे थे। उसी दिन युद्ध समाप्त हुआ था, वही रात्रि शिविर में गया। एक उद्देश्य से गया कि सोए हुए मार डालूंगा उन लोगों को, मार के उनके सर को लाकर अपने मित्र को दूंगा और प्रसन्न करूंगा। सोचिए अधर्म करने जा रहा है, सोए हुए को कभी नहीं मारना चाहिए। अश्वत्थामा अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए पांडवों के शिविर में रात्रि के समय गया। वहां पे शिविर में पांच जो कि पांडवों के पांच पुत्र थे वो सोए हुए थे, और ये सोचा कि पांचों पांडव सोए हुए हैं, इसलिए उन अश्वत्थामा ने क्या किया, उन बालकों को मार दिया, उनका गला धड़ से अलग कर दिया और पांचों के पांचों का सर जो है ना एक गोनी में डालकर अपने मित्र के पास लेकर आया। बोला मित्र मैंने पांडवों को मार दिया, तुम्हारा दुख जो था मुझे सहन नहीं हुआ, मैंने पांडवों को मार कर उनके सर धड़ से अलग करके लेके आया, मार दिया मैंने। दुर्योधन घायल, दुर्योधन थोड़ा तो उसको लगा कि मर गए पांडव, थोड़ा अंदर अंदर खुशी हुआ, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि पांडव मारे गए। क्यों नहीं विश्वास हुआ? दुर्योधन ने पूछा कि मित्र मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि पांडव मारे गए। बोले कि मित्र मैंने मार के आया पांचों को, विश्वास नहीं, उनको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैंने उसके सर को ये लोग गोली में भर के रखा है, देख लो। लेकिन दुर्योधन कहता है कि मित्र एक बात मुझे बताओ, जब तुम पांडवों को मारने गए थे तो कृष्ण किधर था? कृष्ण किधर था? एक केवल मेरे को एक बात केवल बता दो, कृष्ण किधर था? क्योंकि 18 दिन के युद्ध में मैंने कुछ जाना नहीं जाना, वो बात की बात है, लेकिन इतना तो समझ गया कि जहां पे कृष्ण है वहां पे पांडवों का बाल बात कोई नहीं कर सकता कोई, इतना तो मुझे समझ में आ गया, इसलिए पहले मुझे बताओ तो वो कृष्ण किधर था। दुर्योधन इतना विश्वास हो गया, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो वृद्धि, कृष्ण जहां पे है वहां पे सारे विजय, इसलिए कृष्ण को अपना लो, हमेशा विजयी बने रहो, हरि नाम को अपना लो, कृष्ण नाम का ये जो धन है उसको अपना लो, हमेशा विजय होती रहेगी। दुर्योधन ने बोला कि मुझे विश्वास नहीं है, मित्र लाया हूं ले लो सर को। दुर्योधन ने ले लिया सर को, सर को लेकर पकड़ा और हाथ से दबाया तो फस 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 सब टूट गया, क्योंकि दुर्योधन को पता था भीम का जो सर है ना वो वज्र के समान है, लेकिन सारे के सारे सर फस फस हो गए। पता चला दुर्योधन को अभी तक तो थोड़ा अंदर अंदर प्रसन्न भी हो रहा था, लेकिन अभी पता चला है कि तुमने घोर अन्याय करके आ गया, घोर पाप करके आ गया मित्र, तुम बालकों को मार डाला। बहुत दुखी हुआ दुर्योधन। और उसी समय एक ऋषि का श्राप था दुर्योधन को कि जिस समय इसके जीवन में हर्ष और शोक दोनों एक साथ में आएगा उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन थोड़ा तो पहले सुखी खुशी हुआ था, हर्ष हुआ था उसको, लेकिन तुरंत ही जैसे पता चला कि पांचों के पांच पुत्र है, बालक मार दिया इसको, बहुत दुख हुआ। और हर्ष और शोक एक साथ में आने की वजह से दुर्योधन ने अपने प्राण को त्याग दिया, मर गया। बताइए, मित्र भला करने चला था, उसके प्राण हर लिया, घोर पाप किया। और वास्तव में घोर पाप है, बच्चे स्त्री बूढ़े सबके ऊपर अन्याय करना मारना पाप है, इसको आतताई बोला गया है, इनको मार देना चाहिए। अश्वत्थामा ने इस प्रकार से घोर पाप कर बैठा। इधर क्या हुआ शिविर में, आइए अपने आपको शिविर में लेके पांडवों के। जब द्रौपदी सुबह उठी अपने पुत्रों को उठाने गई, सोए हुए पुत्रों को द्रौपदी सुबह उठाने गई, तो सोचिए क्या बीता रहेगा द्रौपदी को, जिसके पांच पुत्र और पांचों के पांचों पुत्र का शरीर से सर गायब है, क्या हुआ रहेगा। सुध गोस्वामी पाद इस दृश्य को, इस द्रौपदी माता द्रौपदी के साथ क्या हुआ और कैसे मां द्रौपदी कितना दुखी हुई, इस दुख का वर्णन करते हुए सुध गोस्वामी बहुत सुंदर बताते हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदारुदत्तस्वं कलाकुलाच्छी तां संतयन्नः कीरितमाने। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं। है तो संस्कृत में, लेकिन सबको पता चल गया कि माँ क्या कर रही है। सुध गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, कि माता ने, माता शिशूनां निधनं सुतानां, माता द्रौपदी ने देखा कि उसके शिशु जो है निधनं वो मर चुके हैं, तो विलाप करने लगी। और मरे भी कैसे हैं, उनके सर गायब है, कौन मारा, सर गायब हो गया, विलाप करने लगी। उसके विलाप करते हुए देखकर अर्जुन जब देखा कि उसके पुत्र मारे गए और द्रौपदी विलाप कर रही है पुत्रों के, उस बिना सर वाले धड़ को पास बैठकर द्रौपदी रो रही है, इस दुख को अर्जुन को देखा नहीं गया, अर्जुन को देखा नहीं गया। अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा लिया कि इन पुत्रों को जो भी मारा होगा सूर्यास्त से पहले अगर मैं उसके सर को द्रौपदी तुम्हारे चरणों में लगकर नहीं डाला तो मैं अर्जुन अपने प्राण को त्याग दूंगा, प्रतिज्ञा ले लिया। और सत्य था, प्रतिज्ञा ले, सही बात है, बालकों की मृत्यु हुआ ये लिए प्रतिज्ञा। पता चला
अश्वत्थामा ने घृणित कार्य किया है, जघन्य कार्य यह अश्वत्थामा ने किया हुआ है। अर्जुन कृष्ण को बोले रथ निकालो, क्योंकि अभी तो स्थलीय युद्ध स्थलीय है, अभी ड्राइवर कृष्ण ही है तो किसको बोलेंगे, रथ निकालो बस, अभी अश्वत्थामा को कैसे भी पकड़ना है। अर्जुन रथ पे आरूढ़ हुआ, भगवान कृष्ण रथ को हाँकने लगे और जैसे ही पता चला अश्वत्थामा कि अर्जुन मेरा पीछा किया, अश्वत्थामा रथ उठाया और वो भी भागना शुरू कर दिया। भागते गए वर्णन है कि इतना तेज अश्वत्थामा भाग रहा था और अर्जुन पीछा कर रहा था, धीरे 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 अश्वत्थामा के रथ में जो घोड़े थे बेचारे फस्त हो गए, घुटने टेक दिया, घुटने टेक दिए और तुरंत ही अश्वत्थामा रथ से नीचे उतरकर दौड़कर भागने लगा। युद्ध का नियम है कि कोई अगर पैदल चला है तो उसको पैदल भगाना है, इसलिए अर्जुन भी रथ से उतरा और पैदल दौड़ाने लगा। उद्देश्य यही था अश्वत्थामा को पकड़ना है और ले जाकर द्रौपदी के चरणों में फेंकना है। लेकिन हुआ क्या, मरता क्या नहीं करता, अश्वत्थामा ने देखा कि अभी मैं पकड़ा जाऊंगा और मारा जाऊंगा, तुरंत ही उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिससे विनाश ही विनाश होता है, ब्रह्मास्त्र, तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। कृष्ण ने देखा और अर्जुन को बताया, अर्जुन उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, मारे जाओगे, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और इस ब्रह्मास्त्र को दमन करने के लिए तुमको भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। और कृष्ण ने बचाया अर्जुन को और बताया, अर्जुन ने भी तुरंत ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। पकड़ा अश्वत्थामा को, पकड़कर लाके द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया, लो इसको मार डालो, क्या सजा देना है। विचार करिए कि एक मां जो कि अपने पुत्र के मौत पे तड़प रही है और उसका जो शत्रु है जिसने मारा है उसको पकड़ के लाद दिया गया, तो मां क्या करेगी, आज की मां तुरंत मार डालेगी ना उसको। लेकिन धन्य है द्रौपदी, धन्य है द्रौपदी, तुरंत ही द्रौपदी के मन के अंदर एक विचार आया कि नहीं अर्जुन, मैं इसको नहीं मारूंगी। अर्जुन ने बोला, क्या बोल रहे, मेरे पुत्रों को मारा है, आतताई है, जघन्य कार्य किया है, मार डालो इसको। द्रौपदी ने बोला, नहीं, पहली बात तो एक ब्राह्मण का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, अर्जुन क्या इसको मैं मार दूंगी तो मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे मेरे पुत्र, अगर मैं इसको मार दूंगी तो जिस प्रकार से आज मैं अपने पुत्रों के लिए तड़प रही हूं उसी प्रकार से इसकी भी मां अपने पुत्र विवाह में तड़पेगी। सीखने वाली बात है द्रौपदी, द्रौपदी ने नहीं मारा, बोला नहीं इसको छोड़ देना चाहिए। तब तो पांडव में से ऐसा कैसे बोल सकते, अर्जुन बोला कि नहीं मार देना चाहिए, भीम बोला मार देना चाहिए, नकुल बोलते नहीं छोड़ देना चाहिए, युधिष्ठिर बोला छोड़ देना चाहिए, अभी हो गया कलह पांडवों में, दो पक्ष हो गया पांडवों में, भगवान देख रहे हैं, अभी अभी महाभारत खत्म हुआ दूसरा चालू कर रहे, एक से पेट नहीं भरा दूसरा शुरू। भगवान ने बोला, सबने पूछा क्या करना चाहिए, द्रौपदी ने पूछा प्रभु आप ही बताइए, भगवान आप बताइए क्या करना चाहिए, भैया आप ही बताइए क्या करना चाहिए। तो कृष्ण ने बोला मार देना चाहिए, युधिष्ठिर बोले नकुल बोला नहीं छोड़ दे, छोड़ना चाहिए इसको,
उन लोग जब पूछे क्या करना चाहिए तो भगवान बोले छोड़ देना चाहिए। अब बताइए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि और क्रिटिकल बना रहे हैं। भगवान बोले मारो भी और छोड़ो भी, दोनों करना है। तो अर्जुन इस भगवान के मंतव्य को समझ गए, रहस्यम होते उत्तम भक्तोष में सखा चेती। आखिर भगवान कृष्ण के मित्र जो थे समझ गए इस आशय को और तुरंत ही उस अश्वत्थामा के जो सिर पे मणि था, एक मणि था उसके पास, उस मणि से तेज निकलता था, उस मणि को काट के निकाल दिया और बिल्कुल आधा आधा सेविंग कर दिया, अपमान कर दिया। एक ब्राह्मण का अपमान ऐसा करना और विशेष करके जो उसका मणि जो तेज था उसको निकाल लेना, मतलब मारने के बराबर हो गया। वर्णन है आज भी अश्वत्थामा चिरंजीवी है और आज भी भटक रहा है, वो उसकी मृत्यु नहीं हुई है, आज भी भटक रहा है, छोड़ दिया गया। लेकिन इस अपमान का जो दुख था ना अश्वत्थामा को, बल्कि मार दिया गया होता तो उसे कबूल था, लेकिन अश्वत्थामा को ये जो अपमान का जो दुख था ना बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था, बिल्कुल सहन नहीं हुआ। और विचरण करते करते इस अपमान का बदला लेने के लिए अभी उसने क्या किया, एक नहीं टोटल छह ब्रह्मास्त्र को चला दिया, छह ब्रह्मास्त्र को चलाया, पांच पांडवों के लिए और पांडव का एकमात्र चिराग जो कि गर्भ में पल रहा था उत्तरा के, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में एकमात्र चिराग पल रहा था पांडव के। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के लिए उसने विचार किया कि मैंने इसके वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, पांच पांडवों के लिए छोड़ा और एक उस उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उस गर्भ के ऊपर छोड़ा, क्योंकि जिसके जिसको अलवंतित किया जाता है ना वो ब्रह्मास्त्र उसको जाके मार देता है, उसी के पास जाता है। पहली बार ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कृष्ण ने, देख लिया, दौड़ ही रहे थे, देख रहे थे, अर्जुन को बोल के बचा लिया, अभी तो किसी को पता भी नहीं, छह ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। फिर भी दुर्योधन ने ऐलान किया ना कृष्ण किधर था, कृष्ण जहां पे है वहां पे पांडव का कोई कुछ नहीं कर सकता है। भगवान ने रक्षा किया ब्रह्मास्त्र से, और यहां तक कि भगवान ने उस जब ही वो ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा के गर्भ के ऊपर आ रहा था, उसने उत्तरा को यह अनुभूति हुआ कि मेरा गर्भ को कोई तो छीण कर रहा है, उत्तरा भागती भागती भागते गए भागती भगवान के पास है, प्रभु रक्षा मां पाहि मां, मेरी रक्षा करो, मेरी मत रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो प्रभु, मेरे बालक को बचा लीजिए, मुझे भले से मर जाना दीजिए लेकिन मेरे बालक को बचा लीजिए। उस समय भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में प्रवेश करके उस बालक को उस ब्रह्मास्त्र से बचा लिया। वो बालक और कोई नहीं था, वो महाराज परीक्षित थे, उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा, परीक्षण परीक्षण कर रहा है पूरा, वो जो गर्भ में जिसका दर्शन हुआ था उसको ढूंढ रहा है। भगवान ने रक्षा किया, गर्भ की रक्षा किया। उसके बाद भगवान ने देखा सब शांति, पांडव राज करने लगे, अभी मेरा काम खत्म, अभी मैं चलता हूं द्वारका, हस्तिनापुर से द्वारका निकलने लगे। हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान, भगवान ने रथ तैयार किया द्वारका के लिए प्रस्थान करने के लिए। उसी समय क्योंकि भगवान ने देखा कि सब कुछ शांति हो गया, सब कुछ समाधान हो गया, सब लोग शांत है, अभी कोई समस्या नहीं है, इसलिए मेरा काम खत्म, अभी मैं निकलता हूं। हस्तिनापुर से भगवान निकले द्वारका की तरफ। अपने रथ पे जैसे ही सवार हुए उसी समय महारानी कुंती ने देखा, जो कि कृष्ण की बुआ थी, पांडव की माँ, महारानी कुंती ने देखा कि भगवान ने अभी अभी उत्तरा के गर्भ में जाकर बच्चे को बचाया भगवान ने, और प्रेम उमड़ गया भगवान के प्रति। रथ पे बैठते हुए देखकर कुंती महारानी बहुत दुखी होने लगी, भगवान जाने लगे, और तुरंत ही जाकर रथ के आगे खड़ी हो गई कुंती महारानी। प्रभु नहीं, आप मत जाइए, इस सारे दृश्य को देखकर ना कुंती महारानी के मन में अभी तो वात्सल्य भाव था, बेटे के रूप में देखती थी, लेकिन देखा कि भगवान ने अद्भुत कार्य किया अभी, और वैसे पहले भी अद्भुत कार्य किए, लेकिन ये सब दृश्य को देखकर जब जा रहे हैं उसके अंदर ऐश्वर्य भाव हुआ और भगवान को प्रार्थना करने लगी, जो कि भागवत में सिरमौर स्थान है जिसको कुंती स्तुति कहा गया है। महारानी कुंती, इसलिए भागवत में प्रथम स्थान दिया गया है। महारानी कुंती की स्तुतियां जो है ना बहुत सिरमौर है, बहुत सारी स्तुति भागवत में है, लेकिन कुंती महारानी जो कि स्त्री है उनकी जो स्तुति है ना बहुत महत्वपूर्ण स्तुति है। महारानी कुंती स्तुति करना प्रारंभ करती भगवान को, तभी क्या करे, समाप्त करे, और भी सेवा भी रहेगा ना, है ना। तो महारानी कुंती की जो प्रार्थना है, क्योंकि मैं शुरू करूंगा तो मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहता हूं, कि शुरू करूंगा तो अभी कुंती महारानी की प्रार्थना में भी एक डेढ़ घंटा दो घंटा तो चला जाएगा एक घंटा कम से कम साथ में भी करे तो, इसलिए हम महारानी कुंती की प्रार्थना हम कल करते हैं, ठीक है। अभी तैयारी करिए भागवत की आरती के लिए, भागवत की आरती की तैयारी करिए। तो इस प्रकार से कुंती महारानी ने भगवान को देखा और भगवान को और सब दृश्य को याद कर रही कुंती महारानी कि प्रभु आप जाइए मत, आज आप इसलिए जा रहे हैं ना कि हमारे जीवन से दुख समाप्त हो गया, प्रभु आप हमको हजारों हजारों दुख दीजिए, हमको दुख दीजिए, लेकिन आप हमारे साथ में रहिए। तो इस प्रकार से कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना किया, जिस प्रार्थना को हम कल श्रवण करेंगे, कुंती महारानी की प्रार्थना, और देखते हैं फिर आगे कहां तक संभव वो हम करने का प्रयास करेंगे। आज गीता कोर्स का अंतिम दिवस है ना, कौन कौन भक्त लोग जाते हो उधर अटेंड करने, ठीक है, तो आप लोग का अगर अनुमति इच्छा रहेगा कल से बढ़ा के करेंगे बहुत जरूरी है गीता कोर्स, गीता का ज्ञान होना चाहिए, मैनुअल बुक है, यंत्र और वाहनी माया, भगवान गीता में बताता है कि ये जो शरीर है ना यंत्र के समान है, इस शरीर को चलाने के लिए जो मैनुअल बुक दिया गया वो गीता है, इसलिए गीता का श्रवण भी बहुत मायने रखता है, इसलिए उसमें हमारा समय भी समाप्त हुआ है। तो हम अभी भागवत की आरती करेंगे, सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए, हम भागवत की आरती शुरू करेंगे। आरती अर्थ शक्ति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आप लोग और नजदीक आ जाइए माँ पुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्पक परमानंद सुधा रसमय फल लीला रति अहरस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मतनि त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु भय भव भय हारिणी सेवत संत सकल सुख कारिणी औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्पर हास्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की परमहंस मुनि मन मोलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे भागवत महापुराण यज्ञ की जय श्रीमद् भागवत आरती की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय आज के आनंद की जय श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे Thank you.